प्रभु आपको आशीष दे। बाय बाय, सुप्रभात दोस्तों। मैं हमेशा ही देर से आता हूँ। बिली मुझे बता रहा था कि आज सुबह और मेरी लगभग 30 निजी भेंट वार्ता होनी थी और मैं दो ही से मिल पाया, तो मैं सोचता हूँ कि दो या तीन से ही मैं मिल पाया। तो मैं हर किसी से नहीं मिल सकता, आप जानते हैं, और लोग इंतजार में रहते हैं और महीनों में सूची पर इंतजार करते रहते हैं, और प्रभु वहाँ कुछ तो महान कार्य को कर रहा है। ओह, वो हमारा परमेश्वर है, क्या वो नहीं है? अब मुझे यकीन है आज सुबह कि हम सभी इस दुखद बात के बारे में जानते हैं जो इस राष्ट्र के लिए घटित हुई कि हमारे राष्ट्रपति श्रीमान कैनेडी को हमने खो दिया है। हालांकि उसके राजनीति में और उसके धर्म के मामले में मैं उस व्यक्ति से असहमत था, लेकिन फिर भी उसका इस तरह से मरना उचित नहीं था, नहीं। और उन छोटे बच्चों को पीछे छोड़ देना और पिता का नहीं होना, और एक माँ जो श्रीमती कैनेडी हैं, भले ही मैं निश्चित रूप से उसके साथ और उसके तरीकों और चीजों से सहमत नहीं रहूंगा, हो सकता है, लेकिन याद रखें, वह एक माँ है। उसने बस अपने बच्चों को खो दिया है और उसने अपने पति को खो दिया, और उनका पति ठीक उसकी गोद में गिरा हुआ था और उसके अपने पति का लहू उसकी गोद में पूरी तरह से गिरा हुआ दिखाई दिया था। यह भयंकर बात है। क्या आपने कभी सोचा? कभी कभी हम सोचते हैं कि वो शैलियाँ और चीजों में राष्ट्र के लिए एक गति को निर्धारित करती हैं। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं श्रीमती कैनेडी ने इस संदेशों में से एक भी नहीं सुना जिसके बारे में मैंने प्रचार किया? यदि वह उनमें से एक संदेश सुन सकती तो शायद कुछ अलग ही करती। और हमारी कुछ बहनें जो इसे सुनती हैं और फिर भी इसका सामना नहीं करती हैं, समझे, देखा। वो एक कैथोलिक में पली बड़ी थी, वो वही सब जानती है, उसके विरोध में कुछ भी नहीं। देखो, वह यह तो एक सिद्धांत है, लोगों के विरोध में कुछ भी नहीं है जो कैथोलिक लोग हैं। यह तो एक सिद्धांत है, कैथोलिक के सिद्धांत। उसी प्रकार से प्रेस्बिटेरियन, मेथोडिस्ट या उनमें से कोई भी हो, देखो, या पेंटिकॉस्टल, उनमें से कोई भी, यह तो सिद्धांत है, लोग नहीं। श्रीमान कैनेडी, मैं सोचता हूँ राष्ट्रपति होने के नाते एक अच्छा काम किया। मेरा हृदय उनकी पत्नी के लिए दुखित हो रहा है। मैं इसके बारे में वास्तविक दुख को महसूस करता हूं, जो हमारा यहां तक अपना राष्ट्र, हमारे देश का उग्र व्यक्ति भी और इत्यादि भी दुख करेगा, वे ऐसा ही कुछ करेंगे। यदि आप ठीक किसी व्यक्ति के साथ असहमत नहीं हो सकते हैं और अपने खुद के स्थान में बने रहते हैं और किसी अन्य व्यक्ति को खत्म करने का कोई कारण नहीं है, केवल इस तरह की बातों की वजह से, और उनके छोटे बच्चे जानते हैं, कहा, एक छोटे से बच्चे ने कहा, अब मेरे पास मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं रहा, पिता भी चले गए, समझे। इसलिए मैंने हमेशा ही सोचा कि किसी दिन मेरी ऐसी दशा होगी। ऐसा लगभग कई बार हुआ, जैसा कि आप जानते हैं, बाहर के देशों में गोली मारने के दौरान जब उनके शरीर को मुझसे दूर रखना पड़ता था, गोली से बचने के लिए मुझे दूरी को बनाए रखना पड़ता था। इसलिए यदि कोई एक व्यक्ति इस तरह से मर जाए, लेकिन यही वो कीमत है जो चुकाई गई है, जो विभिन्न बातों की महिमा के साथ जाती है। देखा, मैं सोचता हूँ हमारे पास हर चौथे राष्ट्रपति के बारे में तकरीबन चार में से एक की हत्या की जाती है, और मुझे इसके बारे में बहुत दुख महसूस होता है। यह शर्म की बात है कि हमारे पास अमेरिका में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो इस तरह के काम को करेंगे। और अब फिर भी, जैसा कि मैंने कहा, मैं उनकी राजनीति से असहमत था। मैं उसके विचारों से सहमत नहीं हूँ जो वो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप देखिए, वह एक दूसरा ही व्यक्ति है, और मैं उनके धर्म के सिद्धांत से सहमत नहीं था। मैं निश्चित रूप से इसके साथ सहमत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह इसी तरह से ऊपर आया था। यही है वो जो इस तरह से था। जैसा कि मैंने कहा, हो सकता है उसने कुछ अलग ही सुना हो सकता है यह अलग रहा हो। हमारे पास यहाँ एक चीज है जो हम करते हैं कि जब कभी हमारा कोई व्यक्ति मरता है, या कोई तो भले ही बाहर का हो, मैं सोचता हूँ कि एक अमेरिकी कलीसिया के नाई, अमेरिकियों के समुदाय के नाई, अमेरिकी लोगों ने श्रीमान कैनेडी को राष्ट्रपति के लिए वोट दिया, और वह था, यही कारण है कि हम एक लोकतंत्र हैं। मैंने श्रीमान कैनेडी को वोट नहीं दिया, मैंने श्रीमान निक्सन को वोट दिया, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से श्रीमान निक्सन को जानता था, और मैंने उसे पसंद किया, और मैंने उसके लिए वोट किया व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। लेकिन इस देश के लोग, अमेरिकी, इस देश के मेरे साथी नागरिकों ने श्रीमान कैनेडी को चुना, और जिस तरह से उन्होंने यह किया है, ठीक है, यह उनके और परमेश्वर के बीच में है, लेकिन यह बहुत कुछ है। लेकिन मैं सोचता हूँ, इस माँ की खातिर, एक मनुष्य होने के नाते, जो बच्चों के लिए माँ है, श्रीमती कैनेडी, क्या आप हम उनके लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ क्षण के लिए खड़े नहीं हो सकते?
लॉर्ड जीसस,
प्रभु यीशु, हम जो मनुष्य जाति हैं, हम एक दूसरे के प्रति एक भावना को रखते हैं और हमें खेद है परमेश्वर कि हमारे राष्ट्रपति की जिस तरह से गोली मारकर निर्दयी हत्या को कर दिया गया था, और हमें इस बात का बहुत ही दुख है कि हमारा राष्ट्र इस स्थान पर आ गया है कि इस तरह से हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो एक मनुष्य की निर्दयी हत्या करके मार देते हैं, जैसा कि उन्होंने उस अश्वेत भाई को ज्यादा समय नहीं हुआ गोली मार दी थी और बस उसे निर्दयी रूप से गोली मारकर नीचे गिरा दिया जाति पक्षपात के कारण। और हमें बहुत ही खेद है कि ऐसे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं प्रभु। हमारी कमजोरी ने इसे घटित होने दिया है और हम श्रीमती कैनेडी के लिए प्रार्थना करते हैं। वो इस राष्ट्रपति की पत्नी है और जानते हैं वे छोटे बच्चे जो उनके पिता के लिए बाट जो रहे हैं, जो उन्हें कुछ दिन पहले छोड़कर चले गए, वो खुशहाल व्यक्ति और वो पैर घसीटकर फर्श पर उनके साथ खेलता था, अब उनका कोई पिता नहीं है। और उस महिला के लिए जो उसकी पत्नी है कि उसका अपना पति उसकी गोद में गिर पड़ा था और उसका लहू उसके वस्त्रों पर बहने लगा था, अभी उसके बच्चों को दफना रही है। और फिर भी प्रभु, हम सोच सकते हैं कि महिला के गलत होने पर भी जिस तरह से उसने राष्ट्र में एक गति निर्धारित की है उसके कपड़े पहनने और इत्यादि से, लेकिन यह पूरी तरह से अमेरिकी लोगों के लिए हो सकता है यही है जो वे चाहते हैं। इसलिए हम आज सुबह उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उसकी सहायता करेंगे और होने पाए इस गहरे शोक की घड़ी में कि वह सत्य जो यीशु मसीह है उसे पाले, इसे प्रदान करे प्रभु। वही वो एक है जो केवल मुसीबत की घड़ी में शांति और विश्राम को दे सकता है। और हमारी सहायता करे प्रभु, निरंतर हमारे साथ रहें, हमारे पूरे हृदयों से एक चमकता हुआ प्रकाश जो हम नहीं जानते कि किस समय पर या कौन सा प्रभाव किसी और के निमित्त हमारे पास हो सकता है। आओ हम मसीह के प्रकाश को आगे चमकाएं जब तक वो नहीं आता है। फिर झुंड का महान चरवाहा जो सारे न्याय को जानता है, जो हर पाप को भरपाई करने के लिए अंदर आएगा, और वो ही केवल यह जान पाएगा कि इसे कैसे करना है। और तब तक के लिए हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी हम पर प्रेम और दया होने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। हाँ, मैं नहीं समझता कि कोई भी मनुष्य का इस तरह से मरना उचित है। अब श्रीमान लिंकन का इस तरह से मरना उचित नहीं हुआ, श्रीमान मैकिनले का इस तरह से मरना उचित नहीं हुआ, हुए लॉन्ग का इस तरह से मरना उचित नहीं हुआ, न ही उनमें से किसी भी व्यक्ति का। मुझे उस पर विश्वास नहीं है। हत्या करना यह बुरी बात है। हमारे जवान समुन्द्र पार ऐसा ही कुछ करने के लिए नहीं लड़े। हमारे झंडे इस तरह से कुछ होने के लिए ऊपर नहीं उठे थे। हम ऐसी ही कुछ बात के लिए अमेरिका के नागरिक नहीं है, नहीं। हालांकि हमारा राष्ट्र पाप के साथ विकृत और दूषित हो गया है और यही है जो इन चीजों को करता है, यही पाप है। अब आज हमारे पास, मैं संडे स्कूल और कुछ चीजों के लिए सिखाने जा रहा हूँ जिसका मैं कलीसिया में उल्लेख करना चाहता हूँ, और वो पहली बात ऐसी है, जब आप ये संदेश को भेजते हैं, मैं चाहूँगा आप मुझे क्षमा करें, मैं आप सभी को रविवार की सुबह बहुत देर तक रोके रखता हूँ जब मेरे पास ये संदेश होते हैं। और फिर यदि परमेश्वर चाहे, मेरा ऐसा करने का कारण यह है क्योंकि मैं यहाँ अपने लोगों के बीच में हूँ और मैं इन सिद्धांतों को उतना ही दृढ़ता से सिखाता हूँ जितना मैं जानता हूँ कि कैसे किया जाए। मैं इन सिद्धांतों को अन्य स्थानों पर नहीं सिखाता हूँ, मैं बस सुसमाचार के मुख्य मूल सिद्धांतों पर खड़ा हूँ, लेकिन ऐसे सिद्धांत जो दृढ़ है मैं उन्हें अन्य स्थानों में नहीं सिखाता। और फिर यहाँ मुझे एक घंटा, कभी कभी दो या तीन घंटे लगते हैं मेरे संदेश के जरिए से बताने के लिए, और मैं आपको यहाँ कभी कभी 12:30 या 1 बजे तक रोके रखता हूँ। और ये मामूली सी बात है जो मैं करता हूँ। मैं कभी कभी सारी रात लगभग रुकता हूँ। मैं घर पर गया, हमने कई बार 8 बजे तक आरंभ किया है और सभा से अगली सुबह 2 या 3 बजे तक घर गए हैं। ये सही बात है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ जब मैं आपके साथ फिर से आऊँगा और तो बस एक छोटा सा उपदेश लूँगा बजाय इसको सिखाने के। जब तक मैं समय से पहले आपको सूचित नहीं कर देता, ये कुछ तो होगा। कारण मैं सोचता हूँ मेरे पास आगे के लिए 7 तुरहियाँ हैं जो सीधा 6ठी मोहर पर जुड़ी हैं। जब 6ठी मोहर ने आवाज दी, सारी 7 तुरहियाँ एक ही समय में चली गई, तो आप देखें। और इसलिए हम मैं उसके आगमन से पहले कलीसिया में बात को लाना चाहता हूँ, यदि मेरा जाना या जो भी हो सकता है, यदि मैं कर सकता हूँ। अब यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आपको समय से पहले सूचित करेंगे, और हो सकता है फिर आज सुबह, जैसा कि हम देखते हैं हॉल पूरा भरा हुआ है और दीवारें और हर कहीं, हम कोशिश करेंगे। हमें एक स्थान मिल गया है, अब हम यहाँ आ सकते हैं। इसमें लगभग 3,000 लोग बैठते हैं और यह अच्छा सभागार है जो ठीक हमारे यहाँ पास ही एक स्कूल का है। और 7 तुरहियाँ हम उन्हें संडे स्कूल में वहाँ प्रचार करने की कोशिश करेंगे, और जिसमें आप बहुत से लोग बैठ सकते हैं, आप देखें, जिससे हम लोगों को अंदर ले जा सकते हैं। हम न्यूयॉर्क पर रिपोर्ट देना चाहते हैं। हमारे पास बस एक अद्भुत समय था वहाँ मॉरियस सभागार में। हमें हर रात लोगों को बाहर करना पड़ता था, वे अंदर ठसाठस भर जाते थे। आग जिस व्यक्ति का यह स्थान था, अग्निशामक उस स्थान को बंद कर देगा। यदि हम लोगों को इस तरह से खड़ा करते हैं, इस तरह के दबाव को देखकर वे बंद कर देंगे। और फिर हमें उन्हें बाहर करना पड़ा, और लोग वहाँ रास्ते पर थे और ऊपर नीचे रास्ते पर चल रहे थे। वे प्रार्थना करते थे कि कोई न कोई थक जाए और उठकर बाहर चला जाए, ताकि वे अंदर आ सके और उन्हें एक बैठने का स्थान मिल सके। समझे, केवल एक व्यक्ति, वे बस एक व्यक्ति के लिए वहाँ बाहर इंतजार करते ताकि वे अंदर आ जाएं। और एक जो अगले दरवाजे पर होता था, और फिर वे एक को इस तरह से अंदर जाने देते थे। जब कोई तो उठकर और बाहर जाता, उसे जल्दी घर जाना होता था। ठीक है, वे अंदर आ जाते और उसमें से कुछ सहभागी होते। देखो, वे आ जाते। यह बहुत अच्छा है, यह लोगों का बहुत अच्छा झुंड है। और मैं विश्वास करता हूँ संसार, मसीह कलीसिया परमेश्वर के लिए भूखा है। और मैं भरोसा कर रहा हूँ कि, धन्यवाद भाई, मैं भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर हमें इस सौभाग्य को प्रदान करेगा जहाँ हम एक साथ आ सकते हैं और हमारे पास अंतिम 7 तुरहियाँ हैं। मैं उन चीजों को आगे लेकर जाना पसंद करूँगा ताकि आप जान जाएं। इसके बाद बिजनेसमैन के नाश्ते में आमतौर पर उनकी वहाँ सभाएं होती हैं। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कहा कि कहीं भी उनकी 50 से लेकर 100 तक उनकी नाश्ते की सभा होती थी, और उस समय उन्होंने 1700 टिकट बेचे और बाकी के स्थान को अंदर से भर दिया। पूरी तरह से पूरा स्थान भर गया था, और हर एक गलियारा और दीवारों के आसपास और ऊपर से नीचे तक सीढ़ियों में लोग खड़े हुए थे। वहाँ कुछ उच्च दर्जे के सेवकगण, कुछ याजक और इत्यादि वहाँ संदेश सुनने के लिए आए थे, और इसलिए मैं समझता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इससे कुछ सहायता मिली है। इसने हो सकता है और अधिक किया होगा, कुछ और अधिक, उससे बेहतर जो वास्तव में हम सोचेंगे कि ऐसा हुआ होगा। अब फिर आज रात हमारे पास एक संदेश होने जा रहा है। आज की रात प्रभु ने चाहा तो एक विषय पर कि कैसे जो आपके मसीह के साथ स्थितियों के बारे में है। और अब ये छोटा सा संदेश होगा, हम आरंभ करना चाहते हैं। मैं 7:30 बजे मंच पर होना चाहता हूँ। यदि हम हमेशा किस समय आरंभ करते हैं, 7:30 बजे? ओह, 7 बजे। मैं मंच पर 7:30 बजे तक आ जाऊंगा, और इससे मुझे 8:30 बजे तक समाप्त करना चाहिए यदि प्रभु ने चाहा तो, क्योंकि मैं बस जल्दी करूंगा जितना जल्दी मैं कर सकता हूं, और मैं अभ्यास करने की कोशिश करूंगा। फिर एक और बात है, हो सकता है कि कुछ अनजान लोगों को हंसते हुए सुने, कारण मैं यहाँ लंबा संदेश लेने की कोशिश करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह एक तरह से मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं दिखाई देता कि यह अनादर है, लेकिन मेरी माँ अक्सर कहती थी, इस तरह से लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यह बिल्कुल ठंड की सुबह को गाढ़े गुड़ के जैसा दिखाई देता है। आप जानते हैं, यह गाढ़ा होता है और धीमी गति से आगे जाता है, और इसलिए इसके विषय में भी यह इसी तरह से है। मैं इन संदेशों में धीमी गति से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर के गन्ने की मिठास है, आप जानते हैं, एक तरह से हमें एक साथ गाढ़ेपन में लाती है। और मैं इसे किसी और प्रकार से नहीं चाहता, मैं इसे बिल्कुल इसी प्रकार से चाहता हूँ, जहाँ मुझे याद है हम खड़े होकर उस गीत को गाते थे, धन्य वह बंधन है जो बांधता है मसीह प्रेम में हमारे दिलों को, उदार मन की हमारी संगति ये जैसे ऊपर की तरह है। देखा, हम भिन्न भिन्न भाग के हैं, यह हमें भीतरी दर्द को देता है, लेकिन हम फिर भी हृदय से जुड़े रहेंगे और फिर से मिलने की आशा करते हैं। और मैं भरोसा करता हूं कि यहां यह हमेशा ही हमारा लक्ष्य रहेगा। उसमें से बहुत से पुराने संत तब से लेकर सो रहे हैं, लेकिन हम अब भी हृदय से जुड़े हुए हैं। और मैं सोचता हूं कि यह उस सुबह का दर्शन, उन्हें वहां पर देखना और उन पुरुष और नारीत्व के युवा डिल्डोल की धन्य और महिमा अब भी वैसी ही दिखती है जैसी उनकी यहां पर थी जब यहां वे पृथ्वी पर थे। और मैं सोचता हूं कि वे हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं, किसी दिन हम उनके साथ जुड़े हुए होंगे परमेश्वर की इच्छा हुई तो। अब मैं और सभाओं को याद रखें, गीतों की सेवा की सभा आज रात 7:30 की बजाय 7 बजे आरंभ होगी। और फिर अगले सप्ताह मैं शेवरेपोर्ट लुइजियाना में रहूंगा और वहां शेवरेपोर्ट लुइजियाना में लाइफ टैबरनेकल में जाऊंगा। और मैं सोचता हूं कि वे रास्ते की उस ओर सभागार को लेने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुरे ने कल रात को फोन किया, उन्होंने कहा यह एक वार्षिक कन्वेंशन है और वे लोगों की एक बड़ी संख्या की आशा कर रहे हैं। बस इससे पहले मैं वचन को पढूं, मैं छोटी सी गवाही को देना चाहता हूं। एक महिला एक दिन यहां पर बैठी हुई थी, वो आपको बताऊंगा कि किसी का प्रभाव दूसरे के लिए प्रार्थना करने से क्या होता है। मैंने तभी वहां देखा और एक और महिला को देखा, मैंने मार्गी कॉक्स जो भाई रॉडनिंग कॉक्स की पत्नी है यहां बैठी हुई थी। और पिछले हफ्ते की बात है, मैं सोचता हूं कि जब हम यहां पर थे पवित्र आत्मा सारी इमारत में लोगों के हृदय को जांच रहा था, तो आप जानते हैं कैसे लोगों को बताया गया था। और वह बैठी हुई थी, वह अभी ठीक यहीं पर बैठी हुई है, लेकिन वह अभी कहीं तो बाहर थी। और मैंने वहां पर देखा और एक महिला थी जिसे बताया गया था जिसे शुगर मधुमेह की बीमारी थी, और मार्गी और दर्शन में यह मार्गी थी और मार्गी वहां पर खड़ी थी। और अब भी मैंने उसे वहां पर देखा, मैंने उसे देखा और यह एक और मैंने सोचा और मैंने इस दूसरी महिला के लिए देखा और दर्शन में मार्गी थी लेकिन प्रकाश उस महिला पर था। तो मैं देखने लगा और मैंने सोचा ठीक है, यदि मैं मार्गी के लिए बताता हूं तो वे कहेंगे निश्चय ही निश्चय रूप से कोई उन्हें जानता है, कहेंगे क्योंकि वो उसका पति तो बस उसका एक जिगरी दोस्त है, वे तो एक साथ ही रहते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ शिकार को जाते हैं और इत्यादि, अवश्य ही वह जानता होगा। लेकिन मार्गी को यह पता नहीं था। लेकिन मैं दूसरी महिला को बताया जो मेरा मानना है कि शिकागो से बाहर की एक बहन थी, जैसा कि मैंने उसे बाद में समझा। लेकिन फिर आकर जो उसके कारखाने में वे मधुमेह का परीक्षण करते थे और वो बहन को मधुमेह हो गया था और इसलिए वह अपने रास्ते पर थी परसों के दिन इसके लिए दवाखाने में थी। और जब उसने इसका उल्लेख किया तब मैंने उसे इस बात की याद दिलाई और मैंने कहा यहाँ आओ बहन मार्गी। और उसके बारे में उसने बताया कि कैसे उसके हाथ सुन्न हो रहे थे और यह कि किस तरह से वास्तव में बीमार महसूस कर रही थी। वो छोटी महिला लगभग दिन रात काम करती है वहाँ पर, सच्ची छोटी माँ अपने पति को उनके घर के भुगतान करने में मदद करने के लिए जिसे वे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी छोटी बहन नेली और चार्ली और जो कि रॉडनी के भाई हैं, उसकी पत्नी और वे सभी साथ साथ वहाँ उन कारखानों में काम करते हैं। वे जितना मेहनत कर सकते हैं उतना वे करते हैं और निंदा के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने अपने बालों को बढ़ने दिया और श्रृंगार को उतार फेंका, इसी तरह की चीजों को किया जब से वे मसीह बन गए। मैं उस मान देने में विश्वास करता हूँ जहाँ वे मान देने के हकदार हैं। और निश्चित रूप से उन दो युवा महिलाओं के प्रति मेरे हृदय में एक हार्दिक स्थान है। और फिर मैं उसके हाथ को पकड़कर और उसके लिए प्रार्थना की और वह ऊपर गई और उन्होंने कहीं भी मधुमेह का कोई निशान भी नहीं पाया, मधुमेह वैसे ही चला गया था। एक महिला जो यहीं कहीं पर बैठी हुई थी जिसे बताया गया था और इस बहन का नाम ब्रूस था, आज सुबह मैं उसे नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन वह हमेशा बहुत ही अधिक प्रार्थना करने वाली एक महिला है। और यह महिला अंदर आई पिछली बार जब मैं यहां पर था और वहां कोई प्रार्थना पत्र या कुछ भी नहीं दिए गए थे, तो वहां पर कोई भी नहीं था, कोई प्रार्थना की पंक्ति नहीं थी, सो वे बस पवित्र आत्मा तब छोटा गण के लिए बताने लगा और ये छोटी सी कुमारी ब्रूस उसने खुद एक बार कैंसर से चंगाई पाई थी और हमेशा ही उसके हृदय में किसी और के लिए बोझ रहता था और वह बस प्रार्थना करती रहती थी। और लुइसविले की एक महिला थी जो मर रही थी, उसके गले में कैंसर था और जब वह प्रार्थना कर रही थी पवित्र आत्मा तब उस महिला के पास चला गया, उसे बताने लगा और जो कुछ भी उसने किया उसे बताता है कि वह कौन थी, मेरा मतलब उसे बताया वह कौन थी और उसकी परेशानी क्या थी और उसके कैंसर होने के बारे में बताया और उसने कहा यह ठीक हो जाएगा। और वह छोटी महिला घर पर चली गई। उसके कुछ दिनों के बाद वह बस गला घुटकर लगभग मरने पर थी, बस उसका गला ऊपर की ओर सूज गया। उसे बहुत जोर से खांसी हुई और कैंसर उछलकर बाहर आ गया और वह एकदम सही है। देखा क्या हुआ, आप देख रहे हैं वो गांठ अपने आप में एक नुकसानदायक है जिसमें एक जीवन होता है। देखा कैंसर ये उस शब्द से आता है, इसका चिकित्सक शब्द केकड़ा है जिसका अर्थ होता है कि इसके बहुत सारे पैर होते हैं जैसे वो केकड़ा आपको समुन्द्र पर मिलता है और यह आप में से आपका लहू चूसता है और उसके गले में यह घातक फोड़ा था, यह वही था जो वो कर रहा था। अब देखिए मैं उस होने वाले फोड़े से नहीं निपट रहा हूँ, मैं उस जीवन के साथ निपट रहा हूँ जो उस फोड़े में है। वो जीवन जो उस फोड़े में है उससे हम निपट रहे हैं। देखा मेरे नाम से वे शैतानों को निकालेंगे। वो शब्द शैतान का मतलब पीड़ादायक होता है जैसे शरीर के लिए और यह एक शैतान था। और फिर जब जीवन उस फोड़े से बाहर चला गया तो निश्चित रूप से उस फोड़े में सूजन होने लगती है। बिल्कुल उसी तरह एक छोटा कुत्ता जो सड़क पर कार से दबकर मरा हुआ पड़ा रहता है ऐसा ही कुछ, उसे कुछ दिनों के लिए धूप में वहीं रखे रहने दे और फिर वह अपने आकार में दुगना हो जाता है। तो यही है जो छोटी महिला को बदतर बना रहा था, जैसे कई बार इसे समझाया है। यदि आप बदतर होते जाते हैं तो यही वो संकेत है कि आप चंगे हो गए हैं, आप देखते हैं। और इसलिए यह हर समय बदतर होते जा रहा था और उसे घुटन दे रहा था क्योंकि यह सूझ रहा था। और लेकिन इसने इसे छोड़ दिया था, जीवन इससे बाहर निकल गया था और उसके इस प्रकार से खांसने से आप देखें इस प्रकार से उछला, इसके बाकी के देह से छोड़कर इसे झटक दिया और वो मरी हुई वस्तु केवल शरीर जिसमें कोई जीवन नहीं है, कैंसर चला गया, बाहर उछला, देखो वो बाहर गिर गया। सो यह क्या है, वो शरीर तब बाहर चला गया, यह शैतान नहीं था जो बाहर निकला था, यह तो वो घर था जिसमें वो रहता था। यह तो बाहर निकल गया था क्योंकि उस महिला के विश्वास ने उसे कहा था, यह जानते हुए कि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, यही है जिसने कैंसर को मार डाला, उसने उस जीवन को निकाल फेंका। अब वह डॉक्टर के पास वापस चली गई और डॉक्टर ने कहा बकवास, वो चीज तो बस वही की वही है जो ये पहले थी। लेकिन यह सही बात है, वो फोड़ा वहाँ पर था लेकिन वो जीवन वहाँ पर नहीं था, समझे। अब क्या होता यदि यह कहीं और होता था जहाँ से यह बाहर नहीं आ सकता था। क्या उसकी कोई तस्वीर है? यहाँ श्रीमती बेकर के फोड़े की इस तस्वीर है जो स्प्रिंगफील्ड इंडियाना से है, जो प्रार्थना के बाद बाहर आया था। ये इसकी एक तस्वीर है, देखिए यही वो शरीर है जिसमें शैतान रहता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इस शरीर में रहते हैं, यह छोटा हो सकता है, बड़ा, लाल सर वाला, काले सर वाला, जो भी हो। देखा या तो शैतान इस शरीर में रहता है या तो मसीह इस शरीर में रहता है। तो ठीक है, फिर जब इसमें से जीवन निकल जाता है आपका शरीर फिर भी यहाँ धरती पर होता है, देखो, लेकिन जीवन वहाँ पर नहीं है। जब जीवन निकल जाता है तब भी शरीर वही था और फिर ये बहन के शरीर से उछलकर बाहर आ गया और बाहर निकाल फेंका और ढांचा बाहर निकल गया। लेकिन यदि यह एक स्थान पर होता है तो यह बाहर नहीं आ सकता है, तब आपका हृदय उस मरी हुई वस्तु को लेता और लहू को शुद्ध करता है हर बार जब यह धड़कता है। इस कारण से बुखार आने लगता है और बाकी सब कुछ होने लगता है क्योंकि यह एक रोग संचार है, आप समझ रहे हैं। और आपका हृदय, मैं सोचता हूँ कि हृदय लहू को शुद्ध करता है जब ये इसमें से होकर गुजरता है। क्या वह सही है बैंडोज? मैं सोचता हूँ कि यह सही है, हृदय जब धड़कता है वह लहू को शुद्ध करता है। एक नर्स जिसे आप जानते हैं और उसके सामने एक और बैठी हुई है, शुद्ध उठाता है और यही एक रोग संचार जो बुखार का कारण होता है, यह रोग संचार को उठाता है और बुखार चढ़ने लगता है। अब आप लोग इसे देखते हैं, यह आपका विश्वास है, यह आपकी कोई भावनाएं नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। चाहे ऐसा हो, यदि मेरा हाथ सीधा नहीं होता है इससे एक बात का भी कोई लेना देना नहीं है, यह तो मेरा विश्वास है जो ऐसा करता है। देखा, ठीक हमारे सामने हम विश्वास के द्वारा एक सही रूप से चंगाई पाए हुए व्यक्ति की छवि को देखते हैं, और फिर हम बस उस व्यक्ति में कदम दर कदम को बढ़ाते हैं और बस ठीक उसी के साथ चलते हैं। देखा, आप वहीं पर हैं और यह यही है जो ये करता है, जो आपका विश्वास है। आपकी भावनाएं नहीं, आपका विश्वास इसे करता है। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति हो। अब कुछ ही क्षण की प्रार्थना के लिए, और हमारे पास यहाँ एक विषय है जिसे हम एक विचार के लिए देना चाहते हैं, और कुछ समय के लिए जो प्रभु इसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार करेगा। और अब फिर यदि आप में से कुछ को आज सुबह वापस जाना है और शाम की सेवा में वे नहीं होंगे, प्रभु ने चाहा तो मैं यहाँ फिर से रहूँगा। क्रिसमस के सप्ताह में परिवार वापस आ रहा है, और फिर क्रिसमस के बाद का रविवार, प्रभु ने चाहा तो मैं अपने क्रिसमस के संदेश को यहाँ भवन में प्रचार करना चाहता हूँ। क्रिसमस के बाद के रविवार को प्रभु की इच्छा है तो विषय होगा मार्ग पर भटकना। सो आइए अब हम अपने सिर को झुकाते हैं और प्रार्थना को रखेंगे। इससे पहले हम वचन को पढ़ें। प्रभु यीशु, इस समय पर आप हमारे निकट हो, और हम जानते हैं कि यह हमारे छोटी सी कलीसिया में कठिन है, और जब बहुत से लोग खड़े हुए हैं, और हम यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्थान आरामदायक है, जो हमें शारीरिक रूप से आराम देता है, क्योंकि ये आरामदायक नहीं है, और हम यहाँ पर दिखावा करने के लिए नहीं है, लेकिन हम यहाँ हैं क्योंकि हमने आपकी उपस्थिति को महसूस किया है, और हम जानते हैं कि आप यहाँ पर हैं, और हम यहाँ पर सुधार के लिए हैं, और हम यहाँ पर हैं जानते हुए कि हम परमेश्वर के भवन में हैं, और हमें यहाँ रहना अच्छा लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता खड़ा रहना या कितना असुविधाजनक है और भरी हुई भीड़ में बैठना, लेकिन हम यहाँ पर हैं क्योंकि हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है। और उसी तरह अवश्य ही उस लड़के ने उस रात को महसूस किया होगा जब पौलुस ने रात भर प्रचार किया। क्या ही लंबा संदेश, शायद सूरज के ढल जाने से लेकर अगली सुबह उसके उगने तक। और एक युवा लड़का वहाँ ऊंचाई पर बैठा हुआ था, वह गिर गया और उन्हें लगा कि वह मर चुका है, और पौलुस ने अपना शरीर उसके ऊपर पसार लिया, और परमेश्वर की आत्मा जो संदेश वाहक पर थी, उसने जीवन की आत्मा को लड़के के शरीर के अंदर वापस लाया, और उसने कहा वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, और युवक जीवित हुआ था। उसने दिलचस्पी दिखाई थी जो पौलुस कह रहा था, और परमेश्वर हम आज सुबह दिलचस्पी रखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय के लिए क्या कह सकता है, और हम प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से प्रत्येक के लिए जीवन की रोटी को तोड़ेंगे, कि जब हम आज रात यहाँ से जाते हैं तो हम इस इमारत से वैसे ही लोग नहीं जाएंगे जैसे हम अंदर आए थे। होने पाए मसीह लोग आपके करीब आ जाएं, होने पाए आज पापी बदल जाएं, होने पाए बीमार चंगे हो जाएं, और होने पाए कि परमेश्वर का राज्य हमारे निकट आ जाए, या यहाँ तक कि हम में हो, क्योंकि हम इसे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे हम उसकी आत्मा पर प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हमें वचनों को दे। आमीन। अब आइए कुछ वचनों को पढ़ें जो कि परमेश्वर का वचन हमेशा सही होता है। और अब और हर एक जन, मैं देख रहा हूँ कि आप उन बहुत से खड़े लोगों के लिए दयालु हों। मैं देख रहा हूँ कि कोई तो व्यक्ति उठा और कोई तो बैठ गया और किसी और को बैठने के लिए स्थान दिया। यह बहुत अच्छी बात है। मेरी इच्छा है कि हमारे पास और भी स्थान होता था, लेकिन हमारे पास इस समय पर अभी नहीं है। मत्ती 27 को निकालें और हम 11वें पद को पढ़ेंगे, और फिर हम इस विषय पर बोलेंगे। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है। यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। सो जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? जरा इस पर सोचें। उन्होंने कहा बरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? तब मैं यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है? सब ने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। क्या दुखद तस्वीर है। मैं इसका एक विषय लेता हूँ। यदि आप इसे उस तरह से लिखना चाहते हैं या इसे ऐसे कहते हैं, और हो सकता है टेप इसे शीर्षक देना चाहेगा मैं यीशु के साथ क्या करूँ जो मसीह कहलाता है, और जिस विषय का मैं उपयोग करना चाहता हूँ उस पाठ के बाद मैं इस विषय का उपयोग करना चाहता हूँ यीशु जो आपके हाथों पर है। यीशु के साथ जो आपके हाथों पर है आप क्या करेंगे? हमारा दृश्य आज सुबह आरंभ होता है उस न्याय के सभागृह में जहाँ पिलातुस वो हाकिम जिसे दृश्य पर बुलाया गया था ताकि वह उस कार्य को कर सके और न्याय को कर सके। यह प्रातःकाल का समय था, दिन के उजियाले से थोड़ा समय पहले, और वह अपनी नींद से बेचैन हो गया था और इस मनुष्य के मामले की सुनवाई के लिए वहाँ बुलाया गया था। यह हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के क्रूस का समय था। उसने कुछ भी नहीं किया था जिससे कि उसे दोषी पा सके, और उसने हर बात का जवाब दिया था। यह बस वही घड़ी थी जो इसे उस तरह से होना था। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हो सकता है बिना इसके पीछे कुछ हुए जो इस तरह के होने का कारण हो। वहाँ पर कुछ तो हर एक चीज का कारण होना है जो स्थान को लेता है, क्योंकि यह उद्देश्य के लिए हुआ था, आत्मा के द्वारा जो उस मनुष्य में है और मनुष्य जाति में और इत्यादि। वहाँ एक उद्देश्य है, इसके लिए एक उद्देश्य है और एक मकसद है, और वहाँ एक कारण को होना है, और उस कारण से इस सबसे महान मनुष्य को होना था जो कभी इस धरती पर रहता था या कभी रह सकता था। इस तरह से होने का जो कारण था क्योंकि इसके होने का ये समय था। देखा, यह इस प्रकार होना ही है और इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। ये ऐसा उस समय होना था, और यीशु ठीक उसी तरह धरती पर आया था जिस तरह से परमेश्वर के वचन ने भविष्यवाणी की थी कि वह आएगा। उसने बिल्कुल ठीक वही किया जो वचन ने कहा था कि वह करेगा। उसने बिल्कुल सही जीवन को जिया और परमेश्वर ने जानने लगाया या प्रकट किया जो उस समय का बीज है। अब याद रखना, परमेश्वर बाइबल उत्पत्ति में आरंभ होती है और प्रकाशित वाक्य पर जाती है। अब यहाँ पर जो पाठ है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझे कि देखें, बाइबल में प्रत्येक पीढ़ी में ये बात को बोला गया है, प्रत्येक पीढ़ी के जरिए से ये बात होती आ रही है। जैसे दानियल ने देखा नबूकदनेस्सर के सपने का अनुवाद, अन्य जातियों के राज्य कैसे आएंगे और वे कैसे आगे जाएंगे और वे कैसे बाहर जाएंगे, और उन लोगों में से हर एक जाति और वे राष्ट्र की अन्य जातियों की शक्तियाँ जो नियंत्रित करती हैं, जिसने संसार को नियंत्रित किया है, जिसने ठीक उसी तरह से किया है जैसा कि दर्शन ने कहा था कि वे करेंगे। अब नबूकदनेस्सर जो सोने का सिर था उठा लिया गया था, तब मादी और फारसी आ गए, और उनमें की प्रकृति धातु की प्रकृति के अनुसार थी, और नबी ने जो कहा ठीक उसके अनुसार। नबूकदनेस्सर सोने का सिर था, जो सबसे बड़ा और पहला राज्य है। उसके बाद मादी और फारसी चांदी हुए थे। उसके बाद नीचे जांघों में जो पीतल हुआ था, और प्रत्येक धातु ठोस और ठोस कड़ा होता जाता है। सोना सबसे नरम है और यह लोहे में समाप्त होता है, जो कि सबसे ठोस है, वह लोहा है। अब उन राज्यों में से प्रत्येक बिल्कुल नीचे प्रकृति के द्वारा आता जाता है, उसी तरह जैसे नबी ने कहा कि वे करेंगे। और वो क्या कर रहा था? वह राज्यों को देखने के लिए एक बीज को बो रहा था। और हर बार जब वो राज्य को जारी किया जाता था, तो उसे उसके अनुसार करना पड़ता था जो वचन ने कहा था। और फिर मसीहा को इस दृश्य पर आना था। और जब मसीह दृश्य पर आता है, उसे परमेश्वर के उन वचनों का उत्तर होना था, जिन्हें पूरा किया जाना था, जिसके लिए भविष्यवक्ता ने बोला था कि वो क्या करेगा। मूसा ने कहा, वो एक मेरे जैसा भविष्यवक्ता होगा। और यदि आपके पास हमारे पास समय होता कि हम उस पहले के समय के नमूने के लिए बताते और यह दिखाते कि कैसे वो जबरदस्त समय में, जब इज़राइल मिस्र की कैद में था, तो कैसे मूसा का जन्म एक विचित्र अजीबोगरीब बालक जन्मा था, और वह किस तरह से ऊपर आया और पला बड़ा, और कैसे वो सरकंडों में छिपा हुआ था, और कैसे वो एक अगुआ बन गया, वो पहाड़ों पर चला गया और उसने नियम को पाया और वापस नीचे आ गया। और वो केवल एक अगुआ नहीं था, लेकिन वो एक याजक था और एक राजा और एक अधिकारी था। उन सभी बातों में, और यह किस तरह से बिल्कुल सही मसीह का नमूना है। और मूसा ने कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर मेरी तरह एक भविष्यवक्ता को खड़ा करेगा। देखा, अब जब मसीह का जन्म हुआ था, तो इज़राइल फिर से रोमन साम्राज्य की कैद में था। और वो क्या था? और एक अनोखा बालक जन्मा, और विचित्र, वह कैसे पला बड़ा था, कैसे वो पहाड़ों पर चढ़ गया और नीचे आया और कहा, तुमने उन्हें कहते हुए सुना है, वे जो पुराने समय के हैं, तुम चोरी नहीं करना, आपने उन्हें ये कहते हुए सुना है, तुम व्यभिचार न करना, लेकिन मैं कहता हूँ, जो भी एक महिला की तरफ कुदृष्टि में देखता है, वो व्यभिचार कर बैठा। एक नियम को बनाने वाला देखो, और एक राजा, एक याजक, एक भविष्यवक्ता, जो बिल्कुल उसके जैसा है। इसलिए इन सभी चीजों को पूरा करना था। और जब वो स्थान जो मसीहा के जीवन के लिए वहाँ रखा हुआ था, जब वो पूरी तरह से प्रमाणित हुआ था। अब यह अंतिम लंबा पाठ हो सकता है, जिसे मैं थोड़ी देर के लिए सिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे अब ध्यान से सुने। जब इस विशिष्ट पीढ़ी के लिए वचन को बोला गया हो, तो किसी व्यक्ति को खड़ा होना होगा, जो दृश्य पर ऊपर आ जाए, जो उस वचन को पूरा करे, जो कि परमेश्वर से बोल चुका है। यह कहे गए वचन का एक प्रमाणित होना है। और यीशु ने हर एक योग्यता को पूरा किया, और वो वचन था, बिल्कुल ठीक मसीहा के रूप में प्रमाणित हुआ था। बाइबल में भी अंतिम दिन के लिए वचन को बोला गया है। उन वचनों को जीवन में आना है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हमारे प्रभु के दिनों में कलीसिया ने उसे पिलातुस के न्याय के भवन में आने से पहले ही अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने उसी दिन उसे ठुकरा दिया था, जिस दिन से उसकी सेवकाई, जो भविष्यवाणी करने और उन्हें सत्य के बारे में बताने की आरंभ हुई थी, तब वे इसे समझ नहीं सके कि किस तरह से वो एक मनुष्य होने के नाते वो कैसे जान सकता है कि लोगों के हृदय में क्या है। वे थोड़ा ही जानते थे कि वचन परमेश्वर है, और वचन, बाइबल ने कहा, एक विचारों और हृदय के इरादों को जांचने वाला है। और उन्होंने एक दुष्ट आत्मा कहकर उसे बुलाना चाहा। उसने कहा, मैं इसके लिए तुम्हें क्षमा करूंगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसी काम को करने के लिए आता है, तो उसके विरोध में एक शब्द बोलने के लिए इसे कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और वे सारी बातें जो उसने इस दिन में होने की भविष्यवाणी की है, किसी को तो इसे जीवन में लाना है, लेकिन जब इसे जीवन में लाया जाता है, तो ये इतना अलग होगा कि लोग इसे सोचने लगते हैं, इतना तक कि ये केवल चुने हुए ही होंगे जो इसे देखेंगे। हमेशा ही बस केवल चुने हुए ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे देखेंगे, क्योंकि इसे देखने के लिए ये चुने हुए हैं और ठहराए हुए हैं। इसलिए यह कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता। यीशु ने कहा, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, कोई भी मनुष्य नहीं आ सकता जब तक मेरा पिता उसे नहीं खींचता है, और वे सभी जिसे उसने मुझे दिया है, वह मेरे पास आएंगे। देखा, समझे, तो कोई और जरिया नहीं था। उसने कहा तुम्हारे पास आंखें हैं और तुम नहीं देख सकते, कान हैं तुम नहीं सुन सकते। कहा तो ठीक, यशायाह ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है। समझे, यशायाह की भविष्यवाणी सामने आने लगी, प्रकट होने लगी। यह मत भूलना जो यहाँ है या एक टेप को सुनने वाले हैं कि परमेश्वर का वचन प्रकटीकरण में आना ही है। परमेश्वर यह देखने के लिए बाध्य है कि ये इसे करता है, बिल्कुल जैसे योहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पहले से ठहराया गया था ताकि मसीह के आगमन के लिए आगे आगे जाए। उस स्थान को लेने के लिए किसी मनुष्य को उठना होगा, उस वचन को पूरा करना होगा। उसके बाद जब यीशु अभिषेकित मसीहा के नाई आया और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के वचन ने कहा था कि वो करेगा, और फिर भी यहूदी किसी और के लिए रुके हुए थे। एक राजा हाथ में लोहे का एक राजदंड लेकर आ रहा था जो भविष्य में होने जा रहा था, लेकिन उसने हर एक वचन को पूरा किया। वहाँ एक दिन कफरनहूम में जब उसने पवित्र लेख को उठाया और पढ़ा, क्या आपने ध्यान दिया, उसने उस पवित्र लेख का सिर्फ कुछ भाग पड़ा और फिर उसने पुस्तक को नीचे रखा और कहा आज यह पूरा हो गया है, जब वो छुटकारे के वर्ष को प्रचार करने वाला था। अब उसने इसके बाकी के भाग को क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यह उसके दूसरे आगमन से संबंधित है। उन्हें इसे जानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, यह उस युग के लिए था कि जब वो आएगा, लेकिन वो उसी युग में था। यही कारण है और वह कह सकता है यह वचन का लेख आज तुम्हारी आँखों के सामने पूरा हुआ है, ठीक यहाँ तुम इसे देखते हो, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बीमारों को चंगा करूं, यही है जिसके लिए वो आया था। इसका बाकी का भाग अन्य जातियों के लिए न्याय को लाना था और इत्यादि, सो यह इसके बाद में आता है। देखिए, अन्य जातियों को पहले उसे अस्वीकार करना था। अब क्रूस के चढ़ाए जाने पर, जहाँ हम आज के विषय पर हैं, जो यीशु आपके हाथों में है, परमेश्वर का वचन पूरी तरह से प्रमाणित होते आया था, बार बार और हर बार साबित हुआ था कि वो परमेश्वर के वचन का उत्तर था। जहाँ पर वो, आप देखना, परमेश्वर इसे पहले से ही रख चुका है। सेवकाई इसका अध्ययन करे, लेकिन आप देखते हैं वे इसके बारे में किसी और के शब्द को लेते हैं जो कुछ मनुष्य के झुंड के हैं। वे सत्य के प्रति इतने अंधे हो गए कि जब सत्य को रखा जाता है वे इसे देखने में चूक जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं परमेश्वर न्यायी है, उसने वहाँ पर इसे लिख रखा है, उसने लिख रखा है ठीक यहाँ इस पुस्तक में आज क्या होने वाला है, तो यह पूरा हो जाएगा। लेकिन वे अन्य जो उसे देखने के लिए ठहराए हुए नहीं हैं, वे इसे कभी नहीं देखेंगे। देखो, उन्होंने सबको मिश्रित कर दिया है, और तब यही वो जरिया तब उनके पास था। उन्हें कभी पता नहीं चला था यह वो था, और चिन्हों के द्वारा वो उस समय का संदेश वाहक था। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता था। उनके नबियों ने इसके बारे में बताया, उसने कहा मुझे घटना है लेकिन वह बढ़ेगा, मैं उसके जूते को उतारने के योग्य भी नहीं हूँ, लेकिन वह अब तुम्हारे बीच में खड़ा है, यूहन्ना ने कहा, और वह आएगा और कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ तक रखी गई है, और जो पेड़ फल को नहीं लाता वह भूमि से या दाग की बारी से या उपवन से उखाड़ लिया जाएगा, यह वहाँ पर अब और नहीं रहेगा। अब हम पाते हैं कि वे बातें ठीक उसी तरह से घटित हुई, बिल्कुल जैसे उसने कहा था। वह उनके हृदय में के विचारों को जांच सकता था, वह एक भविष्यवक्ता था। वह जो कुछ भी पहले से बताता वह ठीक उसी तरह से हुआ, बिल्कुल जैसा उसने कहा था। मैं यरूशलेम को जाता हूँ, वहाँ मुझे पापी लोगों के हाथों में सौंप दिया जाएगा, और वे उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और तीसरे दिन वो फिर से उठेगा। लेकिन कहा, देखो कि तुम किसी व्यक्ति को यह नहीं बताना, और उसने इसे उनसे बेसमझ रखा, ये जब तक पूरा नहीं हो गया तब तक वे इसे समझ नहीं सके। देखिए, कई बार वह हमें उस समय तक बेसमझ बनाए रखता है जब तक हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। वह हमें उन चीजों के लिए बेसमझ बनाए रखता है जो हम आज देखते हैं, क्योंकि वो घड़ी है, हमें इसकी आवश्यकता है ताकि उस दिन को प्रमाणित करे जिस दिन में हम हैं। हमारे पिताओं ने इन बातों को नहीं जाना, बाइबल ने कहा कि वे उन बातों को नहीं जानेंगे, उसने उनसे छिपा कर रखा था, और अंतिम दिनों में यह परमेश्वर के पुत्रों के लिए प्रकट होगा, या वे प्रकट होंगे उसकी महिमा और उसकी प्रशंसाओं को पृथ्वी के ऊपर दिखाने के लिए। और वो सब जो दानियल ने अंतिम दिनों के बारे में कहा, और कि कैसे वे जो परमेश्वर को जानते हैं वे अद्भुत कार्य को करेंगे, और वैसे ही बहुत से वचन इस दिन में जुड़ते जा रहे हैं जिसमें हम रह रहे हैं, किस तरह से दुष्ट भरमाने वाला समय पृथ्वी पर होगा, और अभी बिल्कुल जो अब हमारे पास है इसे पूरा करता है। वे उन्हें उसे देखने का मौका दिया गया था और लेकिन उन्होंने उनके उसी मसीहा को अस्वीकार कर दिया। और आज भी ऐसा ही है, बिल्कुल वही बात है। हमें अवसर दिया जाता है क्योंकि परमेश्वर पहले न्याय नहीं कर सकता है बिना उसके न्याय करने के लिए कारण को होना है। और यदि आप किसी व्यक्ति को जो वहाँ जा रहा है उससे कहें, जो तेजी से जा रहा हो, आप उसे रोककर और कहते हैं, वहाँ आगे सड़क पर एक खड्डा है, यदि आप उस गति को जारी रखते हैं तो आप मारे जाएंगे, और वो कहता है, बकवास, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब आप देखें, उसका लहू आप पर नहीं हो सकता है क्योंकि आपने उसे पूरी तरह से चेतावनी दी है। तो ठीक, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इस बात को करता है, वह पूरी तरह से आने वाले न्याय के लिए लोगों को चेतावनी देता है और उसके चिन्हों और आश्चर्य कर्म को दिखाता है जिसकी भविष्यवाणी उस युग के लिए बाइबल में की गई है। वो उन्हें दिखाता है और लोग बस उसे अनदेखा करके आगे बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए नरक जाना ये आसान नहीं है। एक मनुष्य अपने नरक जाने के लिए अपने तरीके से लड़ता है। पहला झूठ जो आपने कभी बोला था, आप जानते हैं कि ये गलत था। पहली सिगरेट जो आपने कभी पी थी, आपको पता था कि यह गलत था। आपने जो पहला दुष्ट कार्य किया था, आप जानते थे कि यह गलत था। लेकिन आपके विवेक में आपको बताया कि यह गलत था, लेकिन आप निरंतर लाल बत्ती को तोड़कर निकलते रहे। उसके रोकने पर आप निकलते रहे। आप परवाह नहीं करते हैं, आप कैसे भी इसे करना चाहते हैं। आप दिखाते हैं कि आप एक बड़े मनुष्य हैं, देखा। लेकिन याद रखें, आप नरक में जाने के लिए अपने तरीके से लड़ते हैं। नरक में जाना ये आसान नहीं है। आपको सत्य को अस्वीकार करना होगा। इससे पहले कि आपकी टक्कर हो, आपको लाल बत्ती को तोड़कर निकलना होगा। इससे पहले कि आपकी टक्कर हो, वहाँ नीचे सड़क पर आपको चेतावनी दी जाती है, जिस चेतावनी को वहाँ ऊपर डाला जाता है। लेकिन आपका इसके बारे में अपना तरीका है जो आज मनुष्य के पास होता है, और वह किसी भी व्यक्ति से अधिक जानता है, और वह आने वाले न्याय के चिन्हों और चेतावनियों को नहीं सुनेगा, और वे जो मसीह को अस्वीकार करते हैं। अब ध्यान दीजिए, और उन्होंने इस मसीह के स्थान पर किसे स्वीकार किया था? अब उस दिन की कलीसिया के बारे में सोचें, जो उनका अंधापन था। उन्होंने एक सार्वजनिक हत्यारे बरब्बा को ठुकराया था। एक व्यक्ति जो हत्यारा साबित हो चुका था, और वो वास्तव में उसके न्याय के लिए रुका हुआ था, और वो एक हत्यारा होने के लिए साबित हुआ है और एक बुरा मनुष्य था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यीशु के जीवन का, जिसकी उसने उन्हें चुनौती दी थी। उसने कहा, तुम में से कौन मुझ पर पाप के लिए दोषी ठहरा सकता है? पाप अविश्वास है। यदि मैं अपने पिता के कार्यों को नहीं करता तो तुम मुझ पर विश्वास मत करो। यदि मैंने तुम्हें वचन की सच्चाई को नहीं बताया है, और वचन मेरे लिए अपने आप में बोलता है, वचन में ढूंढें। उसने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। लेकिन उन्होंने कहा, वह खुद को परमेश्वर बनाता है, वह खुद को कुछ तो बनाता है। उसने कुछ नहीं बनाया, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर बनाया। वह परमेश्वर था, वह वचन को पूरा करने वाला था। उसने कभी भी खुद को कुछ नहीं बनाया, ये परमेश्वर ने उसे बनाया जो वो था। और फिर क्योंकि यह उस वचन के पूरा होने की घड़ी थी, सो लेकिन वे इसे देख नहीं सके क्योंकि यह उनके संस्थागत विचारों के विरुद्ध था, जो उन्होंने मसीह के बारे में विचारों को बनाया था, और ये वचन से बहुत ही अंधापन था। अब और इसके अलावा, इस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें एक हत्यारे को स्वीकार करना पड़ा था, जो सबके लिए खतरा भी था। यह समाज के लिए एक दोषी था, उनके लिए दोषी था, एक हत्यारा। उसे स्वीकार करना था जिससे मसीह को अस्वीकार किया जाए। और इससे पहले कि कोई भी पुरुष या महिला गलत स्वीकार करे, उन्हें सही को अस्वीकार करना होगा। वहाँ प्रकृति के विषय में कुछ तो है, इसके लिए एक नियम है कि आपको गलत चीज लेने से पहले सही चीज को अस्वीकार करना होगा। जैसा कि मैंने हवाला दिया था, सिर्फ एक झूठ को बोलने को बनाए रखने के लिए आपने अपने बेहतर न्याय के विरोध में झूठ को बोला है। आपने अपने भावना के विरुद्ध झूठ को बोला है। आपने उसके विरुद्ध झूठ कहा जो आपके माता पिता ने आपको जो कुछ करने के लिए सिखाया है, या यहाँ तक कि प्रकृति भी आपको यही सिखाती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो इसलिए आप सत्य को अस्वीकार करने के लिए आपको एक झूठ को स्वीकार करना होगा, और झूठ को स्वीकार करने से पहले आपको सत्य को अस्वीकार करना होगा, देखा। सो इसी तरह से इन लोगों ने किया था, उन्होंने सत्य को ठुकरा दिया था, और वो सत्य था। मैं मार्ग सत्य और जीवन हूँ। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे सामने प्रकट बना। पहला तीमुथियुस 3:16 में, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, हमारे हाथों से छुआ गया था, परमेश्वर यहोवा। यह आश्चर्य की बात है, यह चौंकाने वाला है, यह सोचकर कि परमेश्वर जिसने अंतरिक्ष में सौर मंडल को रखा, जिसने तारों को रखा जो इस संसार से हजार गुना अधिक बड़े हैं, उसे बनाया, और यदि उन तारों में से एक पृथ्वी की ओर बढ़ना आरंभ करता है तो 10,000 मील प्रति घंटे में, इसलिए इसे यहाँ पहुँचने में 100 मिलियन साल लगेंगे, यह इतनी दूर है। और दो छोटे तारे जो वहाँ स्थापित हैं, जो यहाँ से एक इंच की दूरी पर दिखता है, हम उनसे आगे कुछ ही दूरी पर हैं, उतना ही जितना हम उनसे दूर हैं, और फिर भी वो वहाँ उनमें से एक भी नहीं आता है, लेकिन क्या है जो इसके स्थान को संभालता है, और वह महान तारागण, ओह प्रभु, सामूहिकता और परमेश्वर की विशालता, उन चीजों को कौन बना सकता है। प्रत्येक को एक दूसरे को पकड़े रहना है, यही कारण है कि ये इसी तरह से बने रहते हैं। यदि वे आवश्यकताओं को पूरा करने से हट जाते हैं तो तारामंडल गिर जाएगा। यही है जो अदन में हुआ था, जब हवा परमेश्वर के नियमों के आवश्यकता को पूरा करने से बाहर निकल गई, पूरी जाति गिर गई। यही है जो आज की परेशानी है। हमें संगठन और संप्रदाय और इत्यादि के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें परमेश्वर के पुत्र और कन्या होना चाहिए और संसार के महान तारा मंडल को एक साथ पकड़े रहना है। न्यूयॉर्क, पिछले हफ्ते में एक संदेश को सुन रहा था या जिसका हवाला किया गया था, आइंस्टीन, उस महान वैज्ञानिक के द्वारा ये कहा गया था, जिसे समय का दिमाग कहा जाता है, और मैंने ऐसा सुना था। तब मैं नॉर्मन को विसेंट पीएल में सुनने के लिए गया, उसके मनोविज्ञान पर बातों को कि लोगों को कैसे करना चाहिए या चलना चाहिए और मनोविज्ञान में खुद को व्यक्त करना चाहिए। फिर आइंस्टीन पर वह एक नक्षत्र के बारे में बोल रहा था जो बाहर था, मंडल के बीच में था, तारागण के बाहर, और यदि कोई व्यक्ति उस गति पर यात्रा कर सकता है, मैं सोचता हूँ कि उसने कहा प्रकाश की, अब मुझे लगता है ये कितनी है, 186,000 मील प्रति सेकंड, यह प्रकाश की गति है, और आप इससे 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप कितने ही करोड़ और आप अरबों मील की दूरी पर हो, और ये 120 मिलियन वर्ष प्रकाश समय को लेगा, यह आपको उस नक्षत्र में ले जाने के लिए, और फिर 120 या 150 वर्ष, 150 करोड़ से अधिक और 150 करोड़ पीछे, और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे वे चकरा गए, और वे वहाँ से बाहर जाने और वापस आने के बाद आपको वास्तव में यात्रा के लिए 3 मिलियन वर्ष लगेंगे, 300 मिलियन वर्ष यात्रा करने के लिए, 300 मिलियन वर्ष, और जब आप पृथ्वी पर वापस आते हैं तो वास्तव में आप केवल 50 वर्ष होकर गए हैं, आप अनंत काल में चले जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। और यह सोचकर कि परमेश्वर जिसने हम सबको बनाया है और इस सबको उसमें स्थापित करके क्रम में रखा है और इसे बोला और नीचे आकर हमारे बीच देहधारी हुआ ताकि हमें छुड़ाए और उसकी भव्य उपस्थिति के साथ हमारा सम्मान करे कि वह अंतिम दिनों में इस पाप से भरी हुई पृथ्वी पर खड़ा हो और ऐसा होने के लिए उसके वचन को सिद्ध कर सके क्योंकि वे उस वचन के लिए बाध्य है। आमीन। वो प्रभुत्व और उस एक महान व्यक्ति का न्याय जो उन चीजों को अपने हाथ में रखता है। ध्यान दें, वे राष्ट्र, पहले तो कलीसिया को उसके वचन से मुड़ना था, उसके बाद कलीसिया ने इसे ठुकरा दिया और उसे एक बाल जबूल या एक दुष्ट आत्मा कहा, उसके बाद इसे शासक के सामने लाया गया ताकि पूरी जाति को दोषी ठहराया जाए। अब हम यीशु को आज सुबह एक गवर्नर पिलातुस, एक रोमी के सामने पाते हैं मुकदमे के लिए, और हम पाते हैं कि कलीसिया ने उसे पहले ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने उसके संदेश पर विश्वास नहीं किया क्योंकि वे वचन को नहीं जानते थे। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुमने मूसा को सुना होता तो तुम मेरे वचन का विश्वास करते क्योंकि वह वही है जिसने मेरे बारे में बताया है। समझे, वहाँ वो वचन है जो भविष्यवक्ता, जो प्रभु भविष्यवक्ता के लिए आता है, और भविष्यवक्ता आने वाली घड़ी के लिए वचन को बोलता था और यहाँ इसकी पहचान की गई और कहा, तुम कहते हो कि तुम मूसा को जानते हो और वह तुम्हारा मार्गदर्शक है, ना ही तुम मूसा को जानते हो, नहीं आप उसके वचन को जानते हो। दूसरे शब्दों में उसने कहा, मैं वचन हूँ, मैं पहचाना गया वचन हूँ जिसके लिए मूसा ने बताया कि वो आएगा, और तुम मुझे दोषी ठहराते हो। देखा, उनके रीति रिवाजों के कारण, देखो कलीसिया ने उसे दोषी ठहराया। अब हम उसे अब पिलातुस के सामने देखते हैं और पूरी तरह से स्वीकार भी किया गया, समय का पहचाना गया, या कलीसिया के लिए समय के संदेश वाहक के द्वारा पहचाना गया, उन्हें समझने और विश्वास करने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसे क्यों अस्वीकार किया? उनमें से बहुत से लोग इसे विश्वास करना चाहते थे, लेकिन उनके रीति रिवाज, लोग नहीं लेकिन उनके रीति रिवाज। अब आप देखते हैं, जैसे निकोदेमुस रात को आया था और उसने कहा, गुरु हम जानते हैं कि तू एक परमेश्वर से आया हुआ शिक्षक है, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है, कोई भी मनुष्य ये काम नहीं कर सकता है जो तू करता है जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। हम वो हम कौन है जो वो बात कर रहा है? वो कलीसिया, फरीसी लोग, उस दिन के अगुआ। हम जानते हैं, हम पूरी तरह से मान लेते हैं कि तू ही वो व्यक्ति है। फिर वे ऐसा क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उनके सिद्धांत, मैं चाहता हूँ कि वह वास्तविक हृदय की गहराई तक चला जाए, क्योंकि यही है जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखा, वो सिद्धांत जिसमें वे पहले से ही खुद से जुड़ चुके थे, ये वही सिद्धांत थे जिससे वे हिल नहीं सकते थे, भले ही उन्होंने इसे देखा कि वह मसीहा था, लेकिन जिस सिद्धांत के साथ वे जुड़े थे वह उसे स्वीकार करने नहीं देता था। क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं उन छोटागणों से पूछना चाहता हूं जो इस समय मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं? अपने हाथ को ऊपर उठाएं। अच्छी बात है। अब एक सिद्धांत, उन्होंने इसका विश्वास किया और वे जानते थे कि यही है। किस तरह से मैं ऐसा ही कहना चाहूंगा, आज भी ऐसा ही है। हम देखते हैं कि आज यहाँ क्या होना चाहिए और हम इसे देखते हैं, लेकिन सिद्धांत इसे स्वीकार नहीं करते हैं, वे सिद्धांत के साथ इतना अधिक यकीन करते हैं। देखो, यह कोई व्यक्ति नहीं है, यह तो सिद्धांत है। जैसे मैंने राष्ट्रपति के लिए बात की है जिसकी हाल ही में हत्या की गई, मनुष्य नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह एक भला मनुष्य है, उसने कभी भी कुछ भी बुरा नहीं किया जितना कि मैं जानता हूँ, लेकिन यह तो सिद्धांत है, ये लोग नहीं है, यह सिद्धांत है। ये यहूदी नहीं थे, ये उनके सिद्धांत थे। उस सिद्धांत ने उसे दोषी ठहराया क्योंकि इसने उनके सिद्धांत के साथ बर्दाश्त नहीं किया था। क्या आप समझे? अब वही बातें जगह ले रही हैं और वे इस सार्वजनिक शत्रु, एक हत्यारे को चुनते हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर प्रशासन भी शामिल हो गई, इसलिए प्रशासन को इसकी सजा सुनानी है, क्योंकि एक जीवन को लेने के लिए इसे प्रशासन के सामने आना ही है। उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं थी क्योंकि वे रोम के शासक के नीचे थे और वे एक जीवन को नहीं ले सकते थे, कोई मतलब नहीं, चाहे उनकी कलीसिया कितना भी कहे हमें ये करना होगा। क्यों? उन्हें इसे करने के लिए रोम की पहले मंजूरी होना है, इसके बिना वे इसे नहीं कर सकते, इसलिए इसे प्रशासन के सामने लाना होगा। अब प्रशासन इस बात में शामिल है। अब क्या ये आज की तस्वीर नहीं है? तो क्या मैं नहीं देखता? देखो, बिल्कुल वैसा ही है। कलीसिया इससे मुड़ गई है, अब इसमें प्रशासन शामिल है। वह समय आ गया था जहाँ सारा राष्ट्र पूरा उसको आना था, मुद्दा बताया गया था, मुकाबला सामने था, सारे राष्ट्र ने उसे अस्वीकार कर दिया था और वे परमेश्वर के क्रोध को उन पर नीचे ला रहे थे, और इससे पहले यहाँ तक कि कलीसिया ने उसे अस्वीकार कर दिया था जो कलीसिया पर क्रोध लाएगा, लेकिन अब राष्ट्र ने उसे ठुकरा दिया है सब पर क्रोध को लाने के लिए, और आज संसार ने उसे ठुकरा दिया है जिससे सारे संसार पर न्याय को लाया जाए, सारे राष्ट्रों का न्याय होना ही है। और हम जानते हैं कि यह उस बड़े रोम के शासक टीतुस के समय में हुआ था, उसने यरूशलेम को घेर लिया और फिर अंत में बस उन्होंने एक दूसरे के बच्चों को खाया, पेड़ से छाल को खाया और जमीन से घास को निकाल कर खाया, और फिर टीतुस अंदर घुस गया और बस दीवारों को नीचे गिरा दिया और शहर को जला दिया और रास्तों पर नीचे लहू इस तरह से बहने लगा जहां पर उसने वहां उनकी हत्या कर दी, और ऐसा होना था इससे पहले कि न्याय करने वाला परमेश्वर कुछ लोगों को करने दे सके जिसे उसने चुना था। इस तरह की चीज के नीचे आने के लिए वहां एक उचित कारण होना है। वो न्याय करने वाला है उसके नियम उसके न्याय की मांग करता है और नियम बिना दंड के एक नियम नहीं होता है। और मैं कहूं कि शहर में एक नियम बनाओ, लाल बत्ती को पार करके जाना यह एक दंड है और फिर उस पर कोई जुर्माना नहीं होता है, तो आप बस लाल बत्तियों को पार करते जाते रहेंगे, लेकिन वहां पर एक जुर्माना होना है। और परमेश्वर के नियम का दंड उसकी योजना को अस्वीकार करना मृत्यु है, और वहां पर एक मृत्यु को होना था, सो इसे चुकाना था। हम आज सुबह उसी तरह के मुकदमे में खड़े हैं, पूरे संसार भर में उसी तरह का मुकदमा। सारे संप्रदायों ने वचन को ठुकरा दिया है। मैं जानता हूं कि ये बहुत ही कठोर दिखाई पड़ता है, और मैं चाहता हूं कि वे सेवकगण जो सुन रहे हैं, यहां उपस्थित हैं, और जो टेप पर भी सुन रहे हैं, वे अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं इसे स्पष्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी मुख्य बात को यहां पर पकड़े हुए हूं, या यहां अपनी मुख्य बात को रख रहा हूं, और मैं कहता हूं कि आज हम एक और पिलातुस के न्याय के भवन में खड़े हुए हैं। आप कहते हैं यदि मैं वहाँ खड़ा होता तो मैं यीशु मसीह के लिए बात करता, और तो ठीक है, अब आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, यही तो बात है। देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कलीसिया ने कितना भी उसे ठुकरा दिया हो, मैं तो उसके पक्ष में खड़ा रहता। आपको अवसर मिला है, समझे, अब उसे परखा गया है, या बस परखा जाता रहा है, या और मुकदमे पर है, एक संसार के सिद्धांत को गठन करने के लिए, जिसे कलीसिया की परिषद कहा जाता है, ताकि विश्व कलीसिया परिषद का गठन करे। अब और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मतदान किया है कि वे खुद को एक साथ एकजुट करें और कलीसिया का एक परिषद होगा, और कलीसिया के इस परिषद में, जिसमें सभी कलीसियाओं को इस परिषद से संबंधित होना ही है, या यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्रचार करने की भी अनुमति नहीं है, आपको यहाँ तक बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने की भी अनुमति नहीं है, और आपके कलीसिया का उपयोग किसी भी चीज के लिए किया जा सकता है जिसका वे उपयोग करना चाहते हैं। यदि वे इसमें बक्से भरें या गोला बारूद भरें या जो कुछ भी वे करना चाहते हैं, आपका इस पर अब कोई भी नियंत्रण नहीं है। आपको या तो कलीसिया के विश्व परिषद से संबंध रखना है, या आपको संबंध रखना ही नहीं है, और यही वो नियम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ बन रहा है, जो वचन के हर एक बिंदु को पूरा करता है। ये 1933 में प्रभु ने मुझसे जो कहा था उसे पूरा करता है। देखो, और आज सुबह हम उस समय पर खड़े हैं, और यीशु मसीह वो वचन आज मुकदमे पर है, जैसा यह क्रूस चढ़ाए जाने पर था, और अब वो हमारे हाथों पर है, वो संसार के हाथों में है। वो वचन संसार भर में स्पष्ट रूप से पहचाना गया है, देखो, और वह मुकदमे पर खड़ा है। सारे संप्रदायों ने उसे ठुकरा दिया है, और अब वह कलीसिया की परिषद में उस रूप में परखा गया है, और वे उसे फिर से अस्वीकार करते हैं और चुनते हैं, मेरा मतलब जैसा उन्होंने तब किया था। आप देखते हैं इतिहास में प्रकृति स्वयं को दोहराती है, क्योंकि प्रकृति उसी तरह से जारी रहती है। पेड़ अभी भी बढ़ रहे हैं, और सब्जियां आने लगती हैं, और फूल आते हैं, और संसार वैसे ही घूमता है जैसे ये हमेशा होता है, यह प्रकृति है, और प्रत्येक युग की प्रकृति को फिर से उत्पन्न करती है, और उसके प्रतिबिंब को उनके सामने पुनः उत्पन्न करती है कि एक प्रकृति क्या थी। और आज हम खुद को फिर से उसी स्थान पर खड़ा हुआ पाते हैं। अब यीशु वो वचन था, यूहन्ना पहला अध्याय कहता है, हम सभी इसे विश्वास करते हैं। वो वचन था, और क्योंकि वो वचन था, कृपया समझे, वो वचन था, और उसे सिद्धांत के विरुद्ध होना था, और उन्होंने उसके अद्भुत कार्यों के कारण उसे अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा, उसने कहा, कौन मुझ पर दोष लगा सकता है, और उसने क्या बुरा किया था, छोटी महिला ने कहा, उसने क्या बुरा किया, बल्कि बीमारों को चंगा किया, कहा, हम इन चीजों के लिए उसे दोषी नहीं ठहराते हैं, देखो, हम उसे दोषी ठहराते हैं, क्योंकि वो एक मनुष्य होने के नाते खुद को परमेश्वर बनाता है, और उनके अपने वचनों ने कहा कि वह परमेश्वर होगा। यशाया में वो महान भविष्यवक्ता जिसने यशाया की 66 पुस्तकें लिखी, और आरंभ से पहले और किताब के बीच में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आता है, और सहस्राब्दी राज्य में समाप्त होता है। और बाइबल में 66 किताबें हैं, जैसे यशाया में 66 अध्याय हैं, इसका उल्लेख हुआ है, यह इस तरह से घटित होता है। इस यशाया 9:6 में उसने कहा, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और उसका नाम युक्ति करने वाला, शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, अद्भुत रखा जाएगा। और अंधे रीति रिवाज या सिद्धांत इसे नहीं देख सकते थे कि वो परमेश्वर था, उनके अपने भविष्यवक्ता के द्वारा जिसके पास वो वचन आया, उसने कहा कि वो परमेश्वर होगा। अंधे सिद्धांत, तो उन्होंने वचन को ठुकरा दिया था और इसके स्थान पर एक हत्यारे बर्रब्बा को चाहा था। और आज वचन इस दिन के लिए स्पष्ट हुआ है, प्रमाणित किया गया है, इसे वास्तविक बनाया है, यह सत्य होने के लिए दिखाया गया है। और अंतिम दिनों में जैसा कि यीशु ने कहा, जैसा कि सदोम के दिनों में था और इत्यादि, तो वैसा ही यह मनुष्य के पुत्र के आगमन पर होगा। वही परमेश्वर खुद जो वचन था, अंत के समय की भविष्यवाणी की और क्या होगा, और संध्या के समय में वो उजियारा चमकेगा, और कैसे वो मलाकी 4 वो इन चीजों को आगे भेजेगा और उन्हें साबित करेगा, और इसे निर्णय के स्थान पर लाया गया है, और कलीसिया ने इसे ठुकरा दिया है। और कलीसिया ने क्या चाहा है? एक वचन का हत्यारा, वो एक जो सिद्धांत को लेता है। यदि सिद्धांत वचन के विपरीत है, तो ये वचन का एक हत्यारा है, और वे संप्रदाय के रीति रिवाजों को चाहते हैं, बजाय एक सच्चे वचन के जो प्रकट हुआ है, यह साबित हुआ है कि ये परमेश्वर है जो लोगों के बीच में है। विज्ञान के द्वारा, चित्रों के जरिए से, एक प्रकाश, वही प्रभु का दूत, अग्नि का स्तंभ, वही एक जो यीशु मसीह की देह में धरती पर रहता था, जो अंतिम दिनों में उसके लोगों पर आया है, जहाँ विज्ञान ने इसका चित्र लिया है। कलीसिया ने इसके कार्यों को देखा है, यह पूरी तरह से टेप और इत्यादि में पहचाना गया है, हर कहीं और सारे संसार भर में, और व्यक्तिगत रूप से सेवकाई को किया है। और फिर भी उन सभी में उनके सिद्धांत कलीसिया के एक परिषद की इच्छा कर रहे हैं, ताकि सत्य को दोषी ठहराएं, एक हत्यारे की इच्छा कर रहे हैं, जिसे बंद करना है या रोकना है या निकाल देना है, यह ऐसा करेगा। वे इस तरह के एक चीज को रोकेंगे, या कलीसिया की परिषद को इसे करना होगा। वहाँ पशु की शाप है, मसीह विरोधी, जो वचन के विरुद्ध है, वचन जो मसीह है। लेकिन न ही उनका, वे सोचते हैं कि यह रीति रिवाज है, उन्हें लगता है उनके रीति रिवाज परमेश्वर की ओर से है, देखा। लेकिन यह वचन के साथ मेल नहीं खाता है, और न ही परमेश्वर इसे सही होने के लिए प्रमाणित करता है। यीशु वचन के साथ खड़ा था, लेकिन उनके परिषद के साथ नहीं, लेकिन वचन के साथ, और वचन ने साबित किया कि वो परमेश्वर था। और आज यह साबित होता है कि ये परमेश्वर है, क्योंकि यह वही जीवन जीता है, यह हमारे बीच उन्हीं कामों को करता है जो उसने वहाँ पहले किए और भविष्यवाणी की। तो वे क्या करते हैं? वे कुछ ऐसा स्वीकार करते हैं जो उन्होंने पहले ही स्वीकार किया है, उसी सिद्धांतों को जो इसे क्रूस पर चढ़ा देंगे, और वो स्वतंत्र अंतर धर्म संप्रदाय का क्रूस पर चढ़ाया जाना नजदीक है, यह सही बात है। अब यह वचनों के विपरीत नहीं है, यह वचनों के साथ मेल खाता है, और उन्होंने पशु की एक मूर्त बनाई, एक प्रोटेस्टेंट के अंदर संसार के संप्रदाय को एकजुट करते हुए, प्रकाशित वाक्य 13:8 के अनुसार पशु की शाप, पशु की मूर्त का गठन कर रहे हैं, और उन्होंने पशु की एक मूर्त बनाई, वो पशु रोम है, हम सभी ये जानते हैं, लेकिन हमेशा ही यह रोम रहा है। सभी, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे रूस हो सकता है, जबकि बाइबल रोम कहता है? देखो, लोगों पर बस गलत असर पड़ता है। देखो, कैसे ऐसी कोई और चीज हो सकती है, जबकि इसकी भविष्यवाणी की गई है, इसे रोम से बाहर आना है। फिर से दानियल की ओर जाएं, वो पैरों में लोहा और मिट्टी है, लोहा कभी खत्म नहीं हुआ, घुटनों से नीचे आखिरी तक, और हर कोई जानता है कि उस वक्त रूस को कोई जानता भी नहीं था, यह रोम था, वो लाल अजगर रोम था, यह हमेशा रोम ही है, और वो लोहा कभी भी किसी और चीज में नहीं बदला, रोम से कुछ और, यह रोम ही बना रहा, और पशु रोम है, और रोम के पास एक धार्मिक व्यवस्था थी, जिसके घातक सिर या घातक घाव जो उसके सिर में चोट पहुंचाई, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा हो गया पागल रोम से पापल रोम में। और अब वे इसकी एक मूरत बनाने पर हैं, पशु की, जो प्रकाशित वाक्य 13 से बाहर आती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया, इस राष्ट्र की संख्या 13 है और प्रकट होता है। मैं नहीं कहता कि ऐसा है, हालांकि ये अजीब बात है, यह गणित रूप से होगा, गणित जो बिल्कुल वचन के क्रम में है। यह प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय में पाया जाता है जो ये राष्ट्र है। अन्य वे सारे पशु पानी में से बाहर आते हैं जो लोगों की अधिक संख्या और भीड़ है, बाइबल ने कहा। लेकिन ये छोटा सा पशु धरती से ऊपर आता है जहाँ पर कोई लोग नहीं थे, फिर भी वो एक मेमना था, धर्म की स्वतंत्रता, फिर वह एक अजगर की तरह बोल उठा और अपने आप को सामर्थ्य के साथ एकजुट किया और वह सब किया जो अजगर ने उससे पहले किया था, बिल्कुल वैसे ही। तो वहाँ आप हैं, इसे बस इसी तरह से होना था, इसके इर्द गिर्द जाने का कोई और दूसरा तरीका नहीं। और यहाँ हम आज एक सिद्धांत को बना रहे हैं, एक सिद्धांत हम तब तक नहीं रोक सकते जब तक कुछ, हमने हर किसी को एक लूथरन बनाने की कोशिश की और ऐसा नहीं कर सके, हम सभी को बैप्टिस्ट बनाने की कोशिश की, हम ऐसा नहीं कर सके, सभी मेथोडिस्ट बन जाएं या सभी पेंटिकॉस्टल, वे ऐसा नहीं कर सके। तो ऐसा करने के लिए समय बहुत ही कम है। उन्होंने एक परिषद को बनाया है, एक प्रमुख पशु की एक मूरत बनाई है, बिल्कुल ठीक जो उन्होंने किया है। और वो क्या है, फिर से वचन को क्रूस पर चढ़ाए जाना नजदीक है या मुकदमे पर है और जल्द ही मंच पर आ जाएगा। ध्यान दें, प्रकट वचन संप्रदाय से यह प्रकट होता है, वो वचन जो संप्रदाय से भिन्न है। यह क्या है, यह सिद्धांत क्या है, यह रोम का एक उपग्रह है। क्या बाइबल कहता है कि ऐसा होगा? जी हाँ श्रीमान, प्रकाशित वाक्य 17, उन्होंने देखा कि रोम खुद को एक स्त्री के एक कलीसिया संबंधित सिद्धांत में ऊपर उठाता है। एक स्त्री कलीसिया को हमेशा एक स्त्री के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, क्योंकि मसीह की दुल्हन एक स्त्री है। एक हवा थी जो गिर गई, वह एक है जिसे छुड़ाया जाएगा, और कलीसिया क्या है, एक स्त्री है जो छुड़ाई हुई है। और ये स्त्री उस पशु पर बैठी हुई है जो 7 सिर के 7 है, और हम 7 पहाड़ियों के बारे में जानते हैं और इत्यादि, जैसा कि बाइबल ने कहा है कि ऐसा होगा। वहाँ कोई गलती नहीं है, वहाँ एक गलती के लिए भी कोई अवसर नहीं है, देखा। और उसके बाद ध्यान दें, हम देखते हैं कि वो एक वेश्याओं की माता थी, समझे। और माँ और बेटी मित्रता में फिर से एकजुट हो जाती हैं, जहाँ एक बार बेटी माँ से भागकर दूर चली गई थी सभ्य जीवन जीने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि उसकी माँ इतनी अशिष्ट और चिड़चिड़ी थी, इतना तक कि लड़की घर से निकल गई। लेकिन अब जब से वह छोटी उम्र की होने लगी है, वह खुद से बहुत सारे दुष्ट कामों को कर रही है। वह अपनी माँ को देखती है, वह सोचती है कि उसकी माँ सही थी, इसलिए वह अपने खुद के लिए एक सिद्धांत को बना रही है, देखा। ऐसा ही है संप्रदायवाद एकजुट करते हुए प्रोटेस्टेंट वाद को, ये जो प्रकाशित वाक्य 17 के वचन में कहा है बिल्कुल उसी बात को पूरा करता है। वे सभी जिनका नाम मेमने की पुस्तक में नहीं लिखा गया था, वे उसके थे, एक या तो दूसरा, या तो पशु या पशु की मूरत, बाइबल ने ऐसा कहा। और यीशु ने इस बारे में बताया, न ही साम्यवाद के रूप में, लेकिन मत्ती 24वें अध्याय में 21वें पद से आरंभ करके 26वें पद तक उसने भविष्यवाणी की कि वो आत्मा इस सिद्धांत में इतनी अधिक वास्तविक चीज की तरह होगी, इतना तक कि ये संभव हो सके तो उन्हीं चुने हुए को भरमा दे। वे चुने हुए जिनके नाम संसार की नींव डालने से पहले मेमने के जीवन की किताब में डाले गए हैं, और स्पष्ट रूप से इसने उन्हें इतना बांध कर रखा है, इतना तक कि उसने ये कहा, यदि उनके कारण उसने काम को कम नहीं किया तो धरती पर कोई देह नहीं बचेगी। और हमारे पास केवल यह 1964 का वर्ष है, क्या ऐसा नहीं है? और मैं सोचता हूँ कि वे दावा करते हैं कैलेंडर के अनुसार उस बात से 17 वर्ष बीत चुके हैं, और हम 1964 में हैं, जो बताता है कितना है यह, जो 21वीं सदी में 36 वर्ष बचे हुए हैं, और हर 2000 वर्ष के बाद संसार उसके सांसारिक सिद्धांत के अंत में आया है, धार्मिक सिद्धांत, सभी सिद्धांतों के अंत पर। और परमेश्वर को अंदर आना पड़ा था, उसने नूह के दिनों में किया था, जो पहले 2000 वर्ष थे, दूसरे 2000 वर्ष, वो व्यवस्था आज सुबह वापस आ गई, जहाँ हमारा विषय बताता है। और उसने फिर से अपना वचन भेजा, उसने नूह के समय में एक नबी के द्वारा वचन भेजा, जो नूह नबी था, और लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया उनके सिद्धांत के लिए। उसने यीशु के समय में अपना वचन फिर से भेजा, वचन संपूर्णता में प्रकट हुआ, लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया। और अब यह 1964 है, 36 वर्ष छोड़ के 2000 वर्ष होने के लिए, और वचन को सामने लाया गया है और सिद्धांत ने इसे अस्वीकार कर दिया है। हम कितने नजदीक हैं? हो सकता है कि हम जितना सोचते हैं उससे भी जल्दी। देखें कि ये कभी भी हो सकता है, हो सकता है कि ये पहले से ही हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले रविवार को यहाँ होने पर बताया था, हो सकता है कि अंतिम नाम उस किताब पर हो। जब ये होता है तो इसमें कोई और अंदर नहीं आता है, संसार वैसे ही आगे बढ़ता रहेगा जैसे कि कलिसिया थी, लेकिन कलिसिया मोहर बंद है। ध्यान दें, अब जैसे ही हम यहाँ से जाते हैं, उनके नाम अब वे भरमाए नहीं जाएंगे जिनके नाम उस पर लिखे गए हैं। यह क्या है? इसके लिए एक सिद्धांत को होना है, समझे? और जरा सोचे, उस सिद्धांत में, उस संप्रदाय से संबंधित होने के लिए, तब आप क्या करते हैं? आपने कहाँ पर किया है? आप वचन से बाहर मोहर बंद हुए हैं। देखो, एक जानलेवा सिद्धांत में जो आपको वहाँ ले जाता है कि भक्ति का भेद तो धरते हैं, लेकिन उसकी शक्ति को इनकार करते हैं। यह पशु की शाप है। बिल्कुल सही बात है। देखा, यह वहाँ पर पशु है, उसने क्या किया, और यहाँ पर वो छवि है, एक ही बात है। और वो पशु इतना बड़ा था कि नीसिया में उस बड़े विश्वव्यापी कलीसिया का गठन किया। देखो, जिसे उन्होंने बनाया कि सारा संसार उसके लिए आता है, उस एक सिद्धांत के लिए आता है। उन्होंने सोचा कि यह बहुत बड़ा है, कोई भी उनके साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं था। बाइबल ने कहा, इतना तक कि उन्होंने पशु की छवि बना ली और सभी प्रोटेस्टेंट को कलीसिया की परिषद में लेकर आए, जिसने एक सिद्धांत का गठन किया कि यहाँ तक आप एक मसीह या कुछ और के रूप में सोच भी नहीं सकते थे जब तक आप उस सिद्धांत से संबंधित नहीं होते। पशु की छाप और परमेश्वर की छाप के बीच यही अंतर है। परमेश्वर अपने वचन से मोहर लगाता है। आप विश्वास करते हैं कि ये वचन है? अब आप कहते हैं, क्या ये सही है भाई ब्रनम? हाँ श्रीमान। अब मैं आप सेबेटेरियन या सेवंथ डे एवेंजेलिस्टों को जानता हूँ, वे कहते हैं शब्द के दिन को मानना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही आपके साथ कठोर होना चाहता हूँ, लेकिन यह पूरी तरह से वचन के अनुसार नहीं है। इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हारे छुटकारे के दिन के लिए मोहर बंद किया गया हो। देखा, अब पवित्र आत्मा वचन है। परमेश्वर तीन नहीं है, वो एक ही परमेश्वर है। तीन विधान, तीन कार्यालयों में, परमेश्वर पिता व्यवस्था के ऊपर, परमेश्वर पुत्र अनुग्रह में, और वही परमेश्वर पवित्र आत्मा, जैसा कि आप इसे कहते हैं, पवित्र आत्मा, वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के विधान में है। परमेश्वर पिता वो वचन था, परमेश्वर पुत्र वचन था, और परमेश्वर पवित्र आत्मा वचन है। देखो, यह तो बस तीन कार्यालय हैं, और पवित्र आत्मा आपको मोहर बंद करता है, इसलिए आप वचन के द्वारा मोहर बंद कर दिए जाते हैं। अब आप कहते हैं, ठीक है, मैं इसके द्वारा मोहर बंद हूँ, तो ठीक है, फिर ये खुद की पहचान को देता है। देखा, यह साबित करता है आप एक सिद्धांत से संबंधित नहीं हो सकते हैं और सिद्धांत और वचन के साथ मोहर बंद हो। देखो, क्योंकि ये इसके विपरीत है, एक दूसरे से आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ठीक है। अब हम देखते हैं कि बड़ी मशीन यांत्रिकी की, बड़ी मशीन की यांत्रिकी, यानी वो मशीन, इसमें एक वाहन में यह पिस्टन होता है, वाल्व होता है, कार्बोरेटर और इत्यादि, यही यांत्रिकी है। मैं ठीक यहाँ कलीसिया के लिए कुछ तो कहना चाहूँगा जो मुझे याद आया है। देखो, यह क्या है, मुझे विश्वास है कि हम अंत के बहुत नजदीक हैं। मैं अब कुछ कहने जा रहा हूँ, देखा, समझे? वो यांत्रिकी, बहुत सारे लोग यांत्रिकी को समझाने की कोशिश करते हैं जबकि आप इसे नहीं जानते हैं। देखा, केवल एक ही चीज आप और आप जानते हैं, आपको इसे जानना चाहिए। यांत्रिकी को समझा गया है। अब क्या हो यदि मूसा, क्या हो यदि कोई कहता, नूह, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात की यांत्रिकी समझाओ कि नाव कैसे तैरती है, यह कैसे है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आपको यांत्रिकी को नहीं जानना है, केवल इसकी गति की। देखो, ये तो गति की है जो आप जानना चाहते हैं। कैसे? ठीक है, यदि कोई इसराइल के लिए आकर और कहता है, बताओ मूसा, मैं समझना चाहता हूँ तुम जानवरों को अपने शब्द से कैसे बना सकते हो। उसने कहा, बताया, यह मेरा शब्द नहीं है, यह परमेश्वर का शब्द है, उसने मुझे इसे करने के लिए बताया। समझे? मैं बताओ, मुझे समझाओ कि कैसे तुमने मक्खियों को बनाया जब वहाँ कोई मक्खी नहीं थी, पर धरती पर बहुत सारी मक्खियाँ आ गई। मूसा इसे खुद समझा नहीं सका। आपको समझाना नहीं है, तुम पूर्व की हवा को कैसे बनाते हो और लाल सागर को आर पार हटाकर एक सुराख को बनाते हो, और हम सभी सूखी भूमि पर तुम्हारे साथ चले, उसकी यंत्रिकी की व्याख्या करो। क्या क्या वो सिद्धांत था जिसका तुम उपयोग करते थे मूसा? क्या था? मुझे बताओ कि वैज्ञानिक अनुसंधान के तुम कौन से परमाणु को आजाद करते हो। समझे? देखा, वो इसे नहीं जानता था। वो तब वह यंत्रिकी को नहीं जानता था, वह बस गतिकी को जानता था। और यही वो तरीका है। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप कैसे जी रहे हैं, लेकिन आप जी रहे हैं। मैं आपके हृदय के लिए नहीं बता सकता हूँ और आपका भोजन कैसे अंदर जाता है और लहू को बनाता है और उस भोजन की शक्ति को लेता है और आंतरिक पथ की उस तीसरे वॉल में चला जाता है और इसे वापस लहू जीवन में बदल देता है और आपके जरिए से वापस भेज देता है। मैं इसे समझा नहीं सकता, लेकिन ये ऐसा करता है। देखो, ये करता है। मैं इसे समझा नहीं सकता, मैं यांत्रिकी नहीं जानता, ये गतिकी है। अब मूसा शायद यांत्रिकी को जानता हो, लेकिन इसे समझने के लिए किसी और का स्थान नहीं है सिवाय मूसा के। वे जानते थे कि इसने काम को किया है और यह संतुष्टि को देता है। क्यों आज लोग इस तरह से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं? समझे? हर कोई मूसा नहीं हो सकता है। वहाँ केवल एक ही मूसा था। वे बस जानते थे कि यह परमेश्वर से था। उन्होंने देखा था कि यह परमेश्वर से था और वे उस पर चलते रहे, और यह उसी तरह से होता गया जब तक कि उन्होंने इस पर सवाल करना आरंभ नहीं किया। वे ऐसे ही चीजों को करने के लिए किसी और को उठाना चाहते थे, कोरा, दातान को। और जब उन्हें कोई तो मिल गया जो कुछ तो संसारिक नकल के कार्य को करे, तो अतः परमेश्वर ने कहा, अपने आप को अलग करें, उस संगठनात्मक सिद्धांत में मत जाओ। देखो, इससे बाहर निकलो, मैं इसे निगलने जा रहा हूँ। और उसने धरती को खोला और उसे निगल लिया। देखा, आप नहीं जानते, आपको यांत्रिकी को नहीं जानना है, केवल गतिकी को जान लें, वह चीज जो उसे धड़काती है, जो इसे सच बनाती है। और देखो, यदि यह उस लक्ष्य तक पहुंचती है जिसकी बाइबल ने प्रतिज्ञा की थी, वो इस दिन में पूरी होगी। देखो, यह फिर से वचन है, वचन की ओर वापस। अब बड़ी मशीन अब स्थापित हो रही है और चलने के लिए तैयार है। वो यांत्रिकी पहले से ही वहाँ पर है। उनके पास पहले से ही एक संगठन की यांत्रिकी का सिद्धांत है जो धरती पर लाने जा रहे हैं। वे कहते हैं एक शांति, उनके पास एक है, जैसे एक राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र आपस में एकजुट हो गए हैं। यह एकजुट होने का समय है। मैंने हाल ही में इस पर प्रचार किया था। वे एक साथ एकजुट हो रहे हैं, क्या करने के लिए? एक विश्व शांति को लाने के लिए। उन्होंने राष्ट्र संघ में ऐसा किया है, उन्होंने हमेशा ही ऐसा किया है, और ये कभी भी काम नहीं करता है, यह काम नहीं कर सकता। राष्ट्रीय एकता कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा रबड़ का गुब्बारा है जो हर एक देश के सिद्धांत की हवा के द्वारा भरा जाता है। ये फट जाएगा और किसी भी चीज से विस्फोट होगा, यह काम नहीं कर सकता। न तो विश्वव्यापी कलीसिया काम कर सकती है। ये मनुष्य के द्वारा एक संगठन है जो व्यवस्था के विपरीत है, या उनकी व्यवस्था परमेश्वर के वचन के विपरीत है, और ये काम नहीं कर सकता है। वो एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक वे सहमत न हो? आप इसे नहीं कर सकते। और कैसे एक मसीह कलीसिया हो सकते हैं? वो पेंटिकॉस्टल्स असेंबली ऑफ गॉड और पेंटिकॉस्टल राज्य की बड़ी कलीसिया और फुल गॉस्पल के लोग, वे कैसे अपने सुसमाचारक की शिक्षा के अधिकार को खो सकते हैं? वही सिद्धांत जिस पर वे खड़े हुए हैं और जहां से वे ऊपर आए थे, ताकि उन संगठनों से बाहर आकर और इसको दोषी ठहराएं, और उन्हें अपने सुसमाचारक के सिद्धांत के अधिकार को खोना पड़ेगा, उन मनुष्यों के साथ चलना जो बाइबल के सिद्धांत और दैविक चंगाई और परमेश्वर की सामर्थ और यीशु मसीह के साथ असहमत है। वे दो एक साथ कैसे चल सकते हैं जब तक वे सहमत न हो? आप वहाँ पर हैं, वही वो घड़ी है जहाँ पर हम पहुँचे हैं, और यही वो बड़ी मशीन है, यही है जो तैयार है। अब उनके पास यांत्रिकी है, उनके पास एकमात्र चीज होनी है जो शैतान है, उस गतिकी के साथ, ताकि पशु की शाप को लगाने के लिए दबाव डाले। जब उसे दबाव डाला जाता है, तब वो गतिकी काम करती है। यांत्रिकी वहाँ पर है, उन्हें वो पहले से ही मिल गई है। मुझे भी कुछ कहना है, इस एकजुट होने के समय कलीसियाओं को एकजुट होते हुए देखना, राष्ट्र एकजुट हो रहे हैं, ये परमेश्वर और उसकी दुल्हन का एकजुट होने का समय है। और मैं इसे आदर और सम्मान के साथ कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मसीही की दुल्हन बुलाई गई है, और मैं विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर के राज्य में मोहरबंद है। मुझे विश्वास है कि वह यांत्रिकी है, वो उस गति के लिए रुकी हुई है, वो उसे धरती से उठा ले जाएगी, उस महिमा में, उस रैप्चर में ले जाएगी। मैं इसे पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। जी हाँ श्रीमान, हम नहीं जानते कि वो इसे कैसे करने जा रहा है, लेकिन वो इसे करेगा। वो गतिकी है, हम बस उसकी देह के उस मशीन के सदस्य बन जाते हैं, उसके स्वरूप में खुद को बनाने के लिए, और उसे खुद को हमारे साथ एकजुट करते हुए देखते हैं, उसके कामों में, उसके प्रेम दानों के साथ, जैसा वह उन्हें विवाह भोज से ठीक पहले हमें सौंपता है, और हम रुके हुए हैं उसके लिए देख रहे हैं। उनकी बड़ी कलीसिया को एकजुट होना है। इस कलीसिया की गति की पवित्र आत्मा के साथ एक फिर से भरा जाना होगा, जिसे हमने छोटे से नाप में किया है, जबकि सिरे का पत्थर देह के साथ एक होने के लिए नीचे आ रहा है। लेकिन जब वो सिर और देह एक साथ एकजुट हो जाते हैं, तो पवित्र आत्मा की सारी सामर्थ ठीक उसी तरह उसे ऊपर खड़ा करेगी। यहाँ तक जो मरे हुए हैं, जो सैकड़ों वर्ष पहले मसीह में मरे थे, वे उसकी पवित्रता की सुंदरता में उठ खड़े होंगे और आकाश में उड़ान भरेंगे। गति की पवित्र आत्मा है, और अब इस बड़े प्रशासन की गति की जिसे उन्होंने बनाया है, यह बड़ी मशीन किसी दिन विश्व कलीसिया परिषद, कलीसियाओं के परिषद एकजुट होकर काम करेंगे, जो एक दबाव को भी डालेंगे। याद रखें, आप कहते हैं जब ऐसा होता है तब आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी, आप पहले से ही इसमें हैं। आप चाहे होना चाहते हो या नहीं, आप पहले से ही इसमें हैं। देखा, ध्यान दें, आपके ऊपर पहले से ही वह आत्मा है। इस दिन में जब वो आत्मा की आंधियां पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बहती है, लोगों को इसमें से बाहर निकालने के लिए राजी करना और लोगों को दिखाना, यही वो कारण है कि मैं उस व्यवस्था के विरोध में हूँ। मैंने देखा है वहाँ कुछ तो है, एक अंधकार, जैसा कि मैंने महिलाओं को देखा है जिस तरह से वे उन पदार्थों को अपने चेहरे पर लगाती हैं। मैंने आपको पिछले रविवार को बताया था, मैं जान गया था कि कुछ तो आ रहा है। मैं क्यों हमेशा इस प्रकार की बातों के विरोध में रहा था, मैंने इसे नहीं जाना, मैं इसे अब जानता हूँ। मैं हमेशा ही संगठित धर्म के विरोध में क्यों था, ये इसलिए मैं इसे अब देख रहा हूँ। ये पशु की छाप है, समझे? मैंने इसे हाल ही में बीते कुछ हफ्तों तक कभी नहीं कहा, देखा? अब कलीसिया की राजनीति के बाद तब क्या होता है, वचन के सत्य प्रमाणित होने के बाद? अब देखिए, इसे अतः एक स्थान पर होना है जहां एक निपटारा होना है। उनकी अगली चाल अब कलीसिया के इसे ठुकराए जाने के बाद यहूदियों का अगला कदम क्या था? कलीसिया वचन से मुड़ गई, वे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते थे। यह एक दुष्ट आत्मा थी, यह उनके विचारों को जानता था जो उनके हृदय में थे। उन्होंने कहा यह दुष्ट था, फिर भी यह वचन था। जो काम उसने किए उसकी गवाही देते हैं, जो वह था प्रमाणित हुआ, वे इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते थे। उसके बाद अगली चीज एक प्रशासन के पास आती है, और यह एक कलीसिया प्रशासन है, क्योंकि पूरे राष्ट्र शामिल है। वहाँ एक मूर्ति पूजक राष्ट्र था जो धार्मिक राष्ट्र के ऊपर नियंत्रण रखने वाला था। अब यह सब कुछ धार्मिक चीज है, सो इसे विश्व धर्म में आना होगा। ओह प्रभु, एक अंधा व्यक्ति इसे देख सकता था, और एक अंधा व्यक्ति क्या कहता है जब वो इसे देखता है? जब वो इसे देखता है तो वह अपने अंधेपन से बाहर आ जाएगा। ध्यान दे, जब ये विश्व परिषद एक साथ आते हैं, हम इस इशू के साथ क्या करें जो मसीह कहलाता है? वे निश्चित रूप से इसके लिए कुछ लेना देना नहीं रखना चाहते, इसलिए तब केवल एक ही काम को करना है, बिल्कुल जो उन्होंने तब किया, वे इसे क्रूस पर चढ़ा देंगे, निश्चय रूप से इसके मुंह को बंद कर देंगे। यह और नहीं हो सकता, इसे ये करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राष्ट्रों की, धर्म की ताकत उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। ऐसी सेवकाई जो यहाँ चलती है और इसी तरह की चीजें, वे पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। आप मुख्यालय से मंजूरी लिए बिना कुछ नहीं कर सकते, जो कलीसिया का प्रमुख है। देखा, पशु की छाप। ओह, हम यहाँ पर हैं, ऐसा ही है, हम पहुँच चुके हैं और वास्तव में प्रमाणित हुआ है। अगला कदम उसे क्रूस पर चढ़ाने का है, अभी भी ऐसा ही है। इसी कारण वे सभी जो उनके साथ नहीं जुड़ेंगे उन्हें रोक दिया जाएगा और प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप देखना इसे नए सिरे से क्रूस पर चढ़ाते हैं, उस प्रतिज्ञा के प्रमाणित वचन को इसे रोकते हैं। आपको अब इसे और करने की अनुमति नहीं है, अब और चंगाई की सभाओं को नहीं करना है, अब बीमारों के लिए और प्रार्थना नहीं करना है। नहीं श्रीमान, आप ऐसा इसे नहीं कर सकते, नहीं, ना ही ऐसा कुछ और। नहीं श्रीमान, आपको कलीसिया परिषद के जरिए से आना होगा, या तो आप इसे बिल्कुल ना करें। अब आप देख सकते हैं कि मैं संप्रदाय के विरोध में क्यों हूँ, क्योंकि यह पशु की छाप है। रोम इसका प्रमुख है, वो पहला है, यह बिल्कुल सही बात है, और यह सभी पुत्रियों से जुड़ने का कारण बनता है। यही वो छाप है, इसकी माँ ने भी यही काम को किया था। रोम पहले कहाँ संगठन हुआ था? विश्व में पहला संगठित धर्म कौन सा था? रोमन कैथोलिक। किसी के पास भी एक ऐसा वचन है जो कहता है कि ऐसा नहीं है? मैं बस इसे सुनूंगा, यह यहाँ नहीं है। वो पहली संगठना, पहली कलीसिया जो कभी संगठित हुई थी, जो निसिया रोम में थी। जी हाँ श्रीमान, और यह बिल्कुल ऐसा ही है जो उन्होंने किया था। और लूथरन ने उसकी मृत्यु के बाद क्या किया? उन्होंने वही किया जो उन्होंने निसिया रोम में किया था। वेस्ली के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन सारे बड़े बड़े परिवर्तन के बाद जो ऊपर आए, उन्होंने वही किया। पुत्रियों को वैश्य के समान बनाया, बिल्कुल ठीक उसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं। मैंने यहाँ कुछ वचनों को लिख कर रखा है, शायद मेरे लिए बेहतर है उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन और देखो, कलीसिया का संगठन होना, जो आज एकजुट होकर उसी सिद्धांतों को लिया है, केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, वो इसकी गति की है, बस कुछ तो ऐसा, ताकि ये इसे पूरे बलपूर्वक स्थापित करे, और ये ठीक सामने एक मुकाबले के लिए आ रहा है। कैथोलिक कलीसिया और प्रोटेस्टेंट कलीसिया मित्र बन जाएंगे। मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ, पिछले 30 कुछ वर्षों से वे एकजुट हो जाएंगे, और आप वैसे ही देखते हैं कि वे अभी क्या कर रहे हैं। वे प्रोटेस्टेंट कभी भी कैथोलिक नहीं बनेंगे, लेकिन वे भाईचारे में संबंध रखेंगे, एक पशु की छाप, पशु की तरह। इसी तरह से मतलब जो माता हवा ने सारे संसार को भ्रष्ट कर दिया, एक शारीरिक मृत्यु को लाया। वो माता हवा, ध्यान से सुने, माता हवा ने पूरी मानव जाति को शारीरिक मृत्यु के द्वारा भ्रष्ट किया। कैसे? वचन को अस्वीकार करने के द्वारा, और उसे स्वीकार करते हुए जो लगभग कुछ वैसा ही है। वो सारी शारीरिक मृत्यु का कारण बनी, क्योंकि उसने सच्चे वचन को छोड़ दिया और सारे सही वचन पर विश्वास किया, सिवाय बस कुछ वचन को छोड़कर। परमेश्वर के संपूर्ण वचन से जरा सी असहमति के कारण हर एक हृदय का दौरा, हर एक मौत और सब कुछ तब से पृथ्वी पर होता आ रहा है। हवा ने इसे किया, जो मृत्यु की माता है। अब आपने देखा कि हम कहां पर आ रहे हैं, मृत्यु की माता। ध्यान दें, उसने बस वचन पर अविश्वास किया। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा है, शैतान ने कहा यह सही बात है, परमेश्वर ने कहा है यह सही बात है, परमेश्वर ने कहा है यह सही बात है, परमेश्वर ने कहा है, जी हाँ यह बिल्कुल सही है, एक तरह से यह सही है। लेकिन देखो कि यही वो सब नहीं है। देखें, तुम्हारे पास तुम्हारी खुली हुई आंखें होनी है, तुम सब। लेकिन परमेश्वर ने कहा, और इससे बात खत्म हो जाती है, वो वचन। देखो, इसने बस वचन को कुछ गलत अर्थ लगाना आरंभ किया, और वही बात यह उसी तरह समाप्त हो रहा है। ध्यान दें, एक पुत्री एक माता और पिता के एक होने के द्वारा एक उत्पादन है। अब यहाँ कुछ चौंकाने वाली बात है, लेकिन शारीरिक मृत्यु जो माता हवा और शैतान के एक साथ होने से है, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने के द्वारा। उन्होंने एक होकर मृत्यु के उत्पादन को जन्म दिया। वह मृत्यु एक उत्पादन है जो शैतान और हवा के एक साथ एक होने से है। हवा के पास वचन था, शैतान वचन का विरोधी है। और देखो, लगभग 100 में का 99.99% शैतान ने स्वीकार किया कि सही है। बहुत ही नजदीक, बाइबल ने कहा अंतिम दिनों में यदि संभव हो तो बिल्कुल चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। देखो यह कैसे आता है, यह हमेशा ही कैसे होता आ रहा है, ये कैसे बाहर जा रहा है, उसी तरह से। परमेश्वर के सारे वचन पर अविश्वास से एक होकर, आपने इसे समझा? यही है वो जिसने मृत्यु को लाया, उस वचन के साथ अविश्वास में एक होकर। अविश्वास बस जरा सा, इसका एक छोटा सा हिस्सा, थोड़ा सा अंश, जरा सा, 100% का 1%, लेकिन यह 100% होना चाहिए। ऐसा ही है। ध्यान दें, परमेश्वर की पुत्री कलीसिया, वो दुल्हन, वो भी परमेश्वर और उसके वचन के एक होने का एक उत्पादन है। वो पवित्र आत्मा देह के शरीर में एक होता है, ये परमेश्वर के पुत्र का उत्पादन करता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता का एक उत्पादन है। और अंतिम दिन में, जैसा कि हमें बताया गया है, जैसा सदोम के दिनों में था, दुल्हन परमेश्वर के वचन से एक हो जाएगी, जो देह में प्रकट होगी। वो पवित्र आत्मा उन्हें परमेश्वर के अंदर मोहर बंद कर रहा है और अविश्वास को बाहर मोहर कर रहा है, बाहर की ओर। जैसा कि मैंने बताया, बीथोवेन का जीवन आप में होता था तो आप बीथोवेन के जैसे जीते, यदि हिटलर का जीवन आप में होता था तो आप हिटलर के जैसे जीते, और जब मसीह का जीवन आप में होता है तो आप मसीह की तरह जिएंगे और मसीह के कार्य को आप करेंगे। और ऐसा होगा, यदि आज मसीह जीवित रहता तो वो वही करता जो वचन ने कहा था कि वह आज करेगा, और वचन ने कहा कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्यों ये अंधी कलीसिया से संबंधित संसार इस समय को नहीं देख सकता है जिसमें वे रह रहे हैं? समझे, हवा सारे शारीरिक मृत्यु का कारण बनी, शैतान के कुछ विशुद्ध मत को वचन के अंदर डालने के प्रयास करने के द्वारा, और यह वही बात है जो कलीसिया के साथ घटित हुई थी निसिया रोम में, वचन के बजाय मत सिद्धांतों को लेने के द्वारा। मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन में भी यही बात है। जब जब उजियाला हर युग में आगे बढ़ता गया और वे उससे मुड़ गए, यही वो कारण है लूथरन मर गए जब वेस्ली ऊपर आने लगा। यह दूसरे युग में था, वचन आगे गया और उन्हें इसे स्वीकार करना था या तो मरना था। यही वो कारण है कि पेंटिकॉस्टल अब मर रहे हैं, क्योंकि वो युग यहाँ पर है। उस वचन को प्रकट किया गया है, उकाब का समय, वचन के वापस लौट आने का समय, पिताओं के विश्वास को लौटाने के लिए फिर से वापस बालकों की ओर, और वे इतने एक हो गए हैं, उन्होंने इसे ठुकरा दिया है और उनके पास कुछ भी नहीं है आत्मिक मृत्यु के अलावा हमेशा। परमेश्वर का शरीर एक दुल्हन के रूप में एक हो गया है, एक हुआ है, वो और मसीह एक साथ कलीसिया के देह में आत्मा काम कर रहा है, जैसा कि इसने यीशु मसीह के देह में किया था, क्योंकि ये उसके शरीर का भाग है, जुड़वा नहीं लेकिन एक, वे एक हैं। एक पति और पत्नी अब दो नहीं है बल्कि एक हैं, और मसीह और उसका शरीर एक है, और वही आत्मा जो मसीह में था वो उसकी दुल्हन में है, उसके शरीर में है, जो सारे वचन के साथ उन्हें जोड़कर उन्हें एक करता है, और इसे प्रकट करते हुए वहाँ परमेश्वर स्वयं रहता है। और मसीह विरोधी ऐसे ही कहने के लिए कहते हैं, ओह, मैं मसीह में विश्वास करता हूँ, मैं सुसमाचार में विश्वास करता हूँ, मैं इन चीजों में विश्वास करता हूँ, लेकिन आप जानते हैं, आप वहाँ पर हैं, लेकिन आप जानते हैं, अद्भुत कार्यों के दिन बीत चुके हैं, ऐसा इस तरह से कुछ नहीं है, देखो वहाँ पर आप हैं। ओह, मैं विश्वास नहीं करता कि आपको यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, लेकिन बाइबल ने कहा कि तुमने किया। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ धर्मशास्त्री इससे असहमत हो, देखा, समझे, इसे होना ही है। आप कहते हैं, ठीक है, बपतिस्मा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिर इसे क्यों लिखा गया था? इससे पौलुस को क्या फर्क पड़ा? इससे बाकी के सारे लोगों को क्या फर्क पड़ा? आप या तो बपतिस्मा लें, बाइबल ने कहा आपके पास एक नाम है जिससे आप जीवित हैं, और आप मरे हुए हैं, क्योंकि आकाश के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया है। आप इस नाम में क्यों प्रचार करेंगे, इसमें प्रार्थना करेंगे, बाकी की हर एक चीज को, लेकिन जब आप तालाब के पास आते हैं तो आप उसे अस्वीकार कर देते हैं, समझे? मैंने एक दिन एक व्यक्ति से कहा, मैंने कहा, क्या हो यदि एक व्यक्ति, उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और फिर वो कहता है कि उसका शारण के गुलाब, घाटी के शोषण के फूल और भोर के तारे के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो क्या आप कहेंगे कि वो ठीक है? उसने कहा, नहीं श्रीमान। मैंने कहा, क्या तुम उसे फिर से बपतिस्मा दोगे? हाँ। मैंने कहा, तुम बपतिस्मा कैसे दोगे? कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। मैंने कहा, तो ठीक है, अब तुमने ठीक वैसा ही किया, तुमने, यदि तुम उनके नामों को लेते हो, तुमने वही किया जो उसने कहा था, शारण का गुलाब, घाटी के शोषण का फूल और भोर का तारा, क्योंकि यह एक शीर्षक है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक शीर्षक है, समझे? उसने कहा, लेकिन यीशु ने कहा, नाम से बपतिस्मा दो। मैंने कहा, बिल्कुल यही तो उसके कहने का मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं, उसने यह नहीं कहा, इन शब्दों को कहो, उन्हें नाम में बपतिस्मा दो, नाम। ओह प्रभु, मैंने कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा शीर्षक है। पिता का नाम पुत्र, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, समझे? मैंने कहा पतरस ने जो कहा क्या वो ये था? बाकी लोगों ने जो कहा क्या वो ये था? समझे? क्या वो ये है? प्रभु यीशु मसीह वो ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम है। उसे लगभग 30,000 मूल निवासी मिले, उसे अब फिर से बपतिस्मा देना है। देखा, यह ठीक है, लेकिन यह सही बात है। पौलुस ने कहा यदि स्वर्ग से एक दूत, पौलुस ने उन लोगों को बताया जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, प्रेरितों के काम 19:5, जो कि पवित्र आत्मा को लेने के लिए है, उन्हें आना था। भले ही वे चिल्ला रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और महान काम को कर रहे थे, उसने कहा कि उन्हें वापस आकर और फिर से यीशु मसीह के नाम से दोबारा बपतिस्मा लेना होगा। यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया था, उसके बाद उन्हें वापस आकर और दोबारा बपतिस्मा लेना था। और उसने कहा गलतियों 1:8 में, यदि स्वर्ग का कोई दूत भी आकर आपको कुछ और सिखाए इसके अलावा जो मैंने सिखाया है, तो उसे श्रापित होने दो। जी हाँ श्रीमान, इसलिए हमें उसके ठीक वचन के साथ बने रहना होगा, इसके हर एक वचन के साथ। देखा, ध्यान दे, ओह इसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल पक्का होना है। यदि आपके मन में कुछ भी संदेह हो रहा है तो आपके लिए अच्छा होगा कि इसे अभी स्पष्ट कर लें। तब तक के लिए प्रतीक्षा न करें, बहुत देर हो चुकी है। उस छाप के गंभीर रूप लेने तक प्रतीक्षा न करें, आप इसे और कभी नहीं देख पाएंगे, आप अंधे हो जाएंगे। उसने इज़राइल को अंधा कर दिया जिससे कि वह अपना वचन प्रकट कर सके। वो अन्य जातियों के लिए भी इसी बात को कर रहा है, क्योंकि यहाँ वे ठीक उसी तरह चल रहे हैं जैसे उन्होंने तब किया था। ध्यान दें, हवा ने अस्वीकार कर दिया और उसके अधिकारों को खो दिया। उसने परमेश्वर के द्वारा वचन को प्रमाणित करते देखा था, उसके बाद उसने ऐसा किया था, उसने इसे अस्वीकार कर दिया और उसके अधिकारों को खो दिया। इसी बात को उन्होंने निसिया रोम में किया और ठीक उसी बात को वे अभी कलीसिया की परिषद कर रही है, बिल्कुल वैसे ही। भाइयों, वहाँ ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक वही बात, यही है जो इज़राइल ने किया, इसी बात को पिलातुस ने किया, यही है जो सब चीजों ने किया है, हमेशा ही हवा से लेकर अब तक एक ही बात को किया है। उन्होंने प्रमाणित वचन को अस्वीकार कर दिया और बजाय इसके एक संप्रदाय को लेते हैं जो मृत्यु, उस आत्मिक मृत्यु को निर्माण करता है। मरे हुए वो वचन अभी भी मृतकों को प्रचार किया जाता है, बिल्कुल ठीक। अब सहशताब्दी में से होते हुए नहीं जाएंगे, देखो उन्हें पहले से ही प्रचारा गया है, हो सकता है वे अभी इसे समझ रहे हों, समझे? केन के पुत्र जो कि परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करने का उत्पादन थे, केन के पुत्रों ने नबी नूह के संदेश का मजाक उड़ाया। आपने क्या ये ध्यान दिया? परमेश्वर के वचन के साथ उसने भविष्यवाणी का न्याय किया और स्पष्ट चिन्ह थे, प्रमाणित चिन्ह कि समय अंत में था, और केन के पुत्रों ने इसका मजाक उड़ाया। सो वैसा ही वे अब करते हैं, तो वैसा ही उन्होंने यीशु के दिन में किया, वैसा ही वे सारे युगों में करते आए हैं। ऐसा हमेशा से होता रहा है, वे उपहास करते हैं और इसका मजाक उड़ाते हैं। उसने कहा अंतिम दिनों में वहाँ उपहास उड़ाने वाले आएंगे, कहेंगे समय में कोई अंतर नहीं है, जब से हमारे बाप दादा सो गए, आपने देखा? वैसे ही शैतान के पुत्रों ने धार्मिक व्यवस्था के जरिए से किया, वचन के जाहिर होने पर यीशु मसीह के समय में। देखो यहूदी लोगों की धार्मिक व्यवस्था, बहन रोज, यहूदी लोग जिन्हें इसे बेहतर तरीके से जानना चाहिए था, लेकिन उनकी व्यवस्था उनका कारण है कि वे परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करते हैं और उपहास करते हैं, जो वे दावा करते हैं कि वे विश्वास करते हैं, वो प्रकट हुआ है कि एक भी वचन बाहर नहीं है, उन्होंने वैसा ही किया है। आज भी वे वैसा ही करते हैं, वो धार्मिक व्यवस्था इस बड़ी मशीन में जो उनके पास है, अब वे करेंगे। वे पूरी तरह से अंत समय पर प्रतिज्ञाओं से मुकर चुके हैं, अंत समय के संदेश से और अंत समय के चिन्ह से, अंत समय का वो सब कुछ जो होना चाहिए, जैसा कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी, वचन दर वचन यह टेप पर है। यदि वे मुझे गोली भी मार देते हैं या वे जो कुछ भी कर सकते हैं, वे उस संदेश को कभी भी रोक नहीं पाएंगे, समझे? ये बस बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा, समझे? इसका पहले से ही प्रचार हो चुका है, ये टेप किया गया है, ये चला गया है, देखा? वे कभी नहीं कर सकते, ये ठीक अभी अंत का वचन है, जो पूरी तरह से बार बार और हर बार प्रमाणित और साबित हुआ है, चिन्हों के द्वारा, अद्भुत कामों, यंत्रिकी के द्वारा, गतिकी के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, स्वयं परमेश्वर के द्वारा, ये साबित हुआ है कि यही वो घड़ी है, वचन के द्वारा और चिन्हों और अद्भुत काम के द्वारा, दोनों से। इस घड़ी के चिन्हों और अद्भुत कामों के द्वारा आपके बीच परमेश्वर का एक संदेश स्वीकार किया गया है, एक संदेश कि यीशु मसीह मरा नहीं है लेकिन जीवित है, बस उसी प्रकार से जैसे वो हमेशा से था, और संदेश को आगे भेज रहा है। और यह बिल्कुल ठीक मलाकी 4 और अन्य सभी वचनों को पूरा करता है जिसे यीशु ने कहा अंतिम दिनों में पूरी तरह से पूरे होंगे वैज्ञानिक रूप से संसार के द्वारा दोनों में। और पत्रिकाओं ने प्रकाश के गोलों की बड़ी तस्वीरों को छापा जो यहाँ भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर के दूत जो नीचे उतर आए जिसके बारे में वे कुछ नहीं जानते हैं, और संसार भर में वह सब जगह हर कहीं यह सिद्ध हुआ है। अगला क्रूस पर चढ़ाया जाना है और हम इसका सामना कर रहे हैं। फिर जैसा कि यीशु ने कहा मैं क्या कहूँगा इस घड़ी से पिता मुझे बचाएं, लेकिन नहीं तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जाए। देखो जैसा कि यह स्वर्ग में है, यही है जो कलीसिया कहती है आज उसके हृदय से। मुझे किसी के साथ जुड़ना है? नहीं परमेश्वर, नहीं, तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जाए। देखो जैसा कि यह स्वर्ग में है। ध्यान दें उस युग के लिए जिस वचन की प्रतिज्ञा की गई थी, उसके बाद उन्होंने इसे ठुकरा दिया, उन्होंने आज भी उसी बात को किया है। और अब मैं बंद करने की ओर आ रहा हूँ, और जब वो आया तब उसने स्पष्ट रूप से खुद के वचन होने की पहचान को दिया, और ये उस मुकाबले पर आ गए जहाँ उन्हें चुनाव को करना ही है या सिद्धांत को लेना है। ये आज भी उसी तरह से है, उन्हें चुनना ही है वचन को या सिद्धांत को लेना है, और उन्होंने सिद्धांत को लिया है। अब वह क्या करता है बंद करते हुए? वह संसार के हाथों पर है, सही है। अब मेरा विषय इस पर आने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा है, लेकिन अब मैंने आरंभ किया है। आप देखना, उठना मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। देखो यहाँ मेरा विषय है, हम इसे जानते हैं, ये बुनियाद का रखा जाना है। हमें अब यहाँ ये बात सब एक ही रेखा में मिलती है। आइए इसे सीधा हृदय के अंदर स्थापित करें और देखें ये कैसा दिखाई देता है। इसे कांच के नीचे रखें। यीशु लोगों के हाथों में है, यह कलीसिया के हाथों में है। आप इस यीशु के साथ क्या करेंगे जिसे अभिषिक्त वचन कहा जाता है? मसीह का अर्थ है अभिषिक्त वचन, समझे? आप इस यीशु के साथ क्या करेंगे? पिलातुस ने कहा मैं इसके साथ क्या करूं? क्या मेरा क्या कदम होगा? मैं इस यीशु के साथ क्या कर सकता हूं जो मसीह कहलाता है? संसार ने क्या कहा? कलीसिया ने क्या कहा? इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे रोक दो, अब हम इसे और नहीं चाहते। मैं आपसे कुछ तो पूछने जा रहा हूँ, क्या आप आज सुबह ओसवाल्ड के हाथ होने के दोषी ठहराए जाने की कल्पना को कर सकते हैं? वो जो राष्ट्रपति का हत्यारा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका न्याय क्या होगा यदि वो साबित होता है कि उसने इसे किया है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके लिए कोई दया छोड़ दी जाएगी? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का लहू उसके हाथों पर है। क्या आप सोचते हैं केंद्रीय न्यायालय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी भी वकालत करे, कहे कि मेरा इसे करने का कोई उद्देश्य नहीं था, उसका जरा भी बहाना नहीं चलेगा, वह नाश हो जाएगा। क्यों? उसके हाथों पर राष्ट्रपति का लहू है। क्या आप उसकी भावनाओं की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो आपके हाथों पर हो? तो फिर यीशु मसीह के लहू के बारे में क्या? क्या आप सोचते हैं आप क्षमा किए जाएंगे इसके पूरी तरह से प्रमाणित होने के बाद? आप कैसे इससे बच निकलेंगे? उसका लहू आपके हाथों में है। दोषी, पापी, आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? आज सुबह सभा के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप सोच सकते हैं? आप कहते हैं ठीक है, मेरा अभिप्राय था, मेरा ऐसा करने का गलत उद्देश्य नहीं है। ओसवाल्ड भी यही बात को कह सकता है। यदि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायी न्याय को करेगा तो इसे कहेगा ये हमारे लिए है, ये राष्ट्र का अपरिवर्तनशील न्याय है। सारा राष्ट्र उस सर्वोच्च न्यायालय से बंधा हुआ है और वहाँ से बचने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। उसने अपराध को किया है, उसे इसके लिए भुगतान करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका उद्देश्य क्या भी हो, उसके उद्देश्य कैसे थे या इसके बारे में कुछ नहीं हो, उसे किसी भी तरह इसके लिए भुगतान को करना है। यदि हमारा सर्वोच्च न्यायालय और इसका न्यायी भरपाई के प्रतिफल की मांग करता है, आप कितना और अधिक खुद को और परमेश्वर के न्याय के कटघरे में पाएंगे जब आप अपने हाथों पर यीशु मसीह के लहू के साथ आते हैं। मैं इस यीशु के साथ क्या करूं जो अभिषिक्त वचन कहलाता है? आपने इसे सुना है, आप जानते हैं कि यह सत्य है, यह पूरी तरह से एक प्रमाणित है। एक हत्यारा, क्या आप निर्दोष मसीह की तुलना में एक वचन का सांप्रदायिक हत्यारा होने की इच्छा करेंगे? क्या आप क्रूस पर चढ़ाओगे? क्या आप बरअब्बा को लेने की हिम्मत करेंगे? क्या आप बरअब्बा के लिए बोल सकते हैं? किस तरह किसी को भी ऐसा करने की हिम्मत हो सकती है? वचन के हत्यारे बरअब्बा के लिए बोले, वचन को छोड़ जो अपने आप में जीवन है और ये आपके हाथों में है। जब मैंने राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या के बारे में सुना तो ये संदेश मेरे हृदय पर उतर आया। मैंने सोचा वो मनुष्य क्या करेगा, और अब इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो मनुष्य इस समय पर सचेत हो सकता है और समझ सकता है कि आगे क्या होने वाला है, और आप किसी समय पर सचेत होने वाले हैं, यहाँ पर या टेप सुनने पर, आप कहीं पर भी हों, आप किसी समय पर जाग जाएंगे, वे जो पापी हैं, और जान जाएंगे कि आपके हाथ में लहू है और परमेश्वर का पुत्र का लहू है, और आप उसकी हत्या के दोषी हैं। आपके पाप ने उसकी हत्या कर दी, उसके वचन में आपका अविश्वास, आप उसकी पहचान को देखने में विफल रहे। पवित्र आत्मा को शोकित किया है, और आप क्या कर सकते हैं सिवाय परमेश्वर के न्याय पर खड़े होने के, ये जानते हुए कि आपके साथ क्या होने वाला है? जी हाँ, ओसवाल के हाथों में जॉन कैनेडी का लहू एक मामूली सी बात होगी उसकी तुलना में, जब आपके हाथों पर यीशु मसीह का लहू होता है, आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं। मैं इस यीशु के साथ क्या करूं जो मसीह कहलाता है? पिलातुस ने कहा, उसे उसके हाथों पर रखा गया था, और यीशु मसीह का लहू फिर से इस सभा के लोगों के हाथों में रखा गया है, इसे इस राष्ट्र के हाथों में रखा गया है, और इस संसार भर में जहाँ जहाँ ये टेप गए हैं, और वे चीजें जो परमेश्वर की प्रमाणित और साबित हुई हैं। अब हम इस यीशु के साथ क्या करेंगे जिसे कल, आज और युगानुयुग एक सा है कहा जाता है? हम इस यीशु के साथ क्या करें? क्या आप उसके पक्ष के स्थान को लेने के लिए तैयार हैं? पिलातुस, और उसी बात पर पिलातुस ने किया, वहाँ तीन चीजें हैं जो आप उसके साथ कर सकते हैं। पिलातुस ने उन तीन चीजों की कोशिश की और वो चूक गया। तीन योजनाएं जिसे आप काम में लाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह कभी काम नहीं करेंगी। पिलातुस ने उसे अपने हाथों से हटाने की कोशिश की, लेकिन जब एक बार आपके हाथों पर रखा जाता है तो यह आपके हाथों पर होता है। पिलातुस ने तीन अलग अलग तरीकों से कोशिश की और असफल रहा। हमें उन सच्चाइयों का सामना करना ही है जो हमारे हाथों में है। हमने उसे उसके वचन में देखा है, हम उसे खुद को प्रमाणित करते हुए देखते हैं, हम ये जानते हैं कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। क्या ये सही है? तब मैं आज सुबह यहाँ न केवल इस सभा से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल 600-700 लोगों से ही बात कर रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन मैं इस टेप पर लाखों लोगों से बात कर रहा हूँ जो संसार भर में जाएंगे। देखा, वो आपके हाथों में है, टेप स्थल में, जहाँ भी आप हैं, आप जानते हैं कि ये सच है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अंधे हैं, आप वचन को नहीं देख सकते, न ही आप परमेश्वर को वचन में देख सकते हैं, और वह आपके हाथों में है। अब आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? पिलातुस ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमें सच्चाई का सामना करना होगा। पिलातुस को इसका सामना करना पड़ा था, वो जानता था, उसने सुना था। तो ठीक है, आप कहते हैं मैंने कभी भी इसे नहीं देखा, आपने इसे किसी भी तरह से सुना है, आप इसे अब भी सुन रहे हैं। देखा, वह चाहता था कि यीशु उसके लिए एक चिन्ह चमत्कार को करे या एक तरकीब को चले, लेकिन वह तरकीबों को नहीं चला रहा था, वह केवल वही कर रहा था जैसा परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। आपने सुना है, विश्वास सुनने से आता है, आपके पास विश्वास है और पीछा छुड़ाने के लिए, जिससे इसे आप अपने हाथों से दूर करें, लेकिन उसे किसी भी तरह से सच्चाई का सामना करना होगा। उसने किया, और सो वैसे ही हमें सच्चाई का सामना करना होगा। वह पूरी तरह से पहचाना गया है। सोचो, आपके हाथों में एक मनुष्य का लहू है। मनुष्य को यह देखना होगा कि उसके हाथों पर किसी अन्य मनुष्य का लहू है। एक हवाई जहाज को देखो, एक पायलट जो विमान से बाहर जब वो उस विमान को चलाता है तो वह उसके हर उपकरण की जांच करता है। क्यों? उसके हाथों पर किसी का लहू होता है। हर कहीं छोटा बड़ा यंत्र जिसे जांचा जा सकता है वो उसकी जांच करता है। जब वह बाहर निकलकर और विमान को इधर उधर घुमाता है तो वह मोटर को घुमाता है, उस इंजन को, और यह देखता है कि यह गर्म हुआ है, और इस पर सभी तरह के दबाव को डालता है यह देखने के लिए कि विस्फोट होगा। यदि यह दबाव को डालने में सक्षम हो जाएगा, या जहाज के पंखों को भी चलाता है उस पर्याप्त हवा से जो उसे जमीन से ऊपर लेकर जाता है। आप खड़े होंगे, आप में से बहुत से लोग एक विमान में या उसमें बैठे होंगे और लगभग पूरा विमान जमीन से ऊपर उठता है। वो उसका सब कुछ दे देता है जो उसके पास है यह देखने के लिए कि क्या कोई चीज रेखा से बाहर है। यदि ऐसा है तो यह अलग होकर और बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो इसे फिर से जांचता है। यदि उसे वहाँ कुछ क्षण के लिए रुकना पड़ता है जब तक वह इसकी फिर से जांच नहीं कर लेता, और यदि वे इसे कुछ समय के लिए रोकते भी हैं तो वह इसे फिर से जांचता है। किस तरह से कलीसिया को इसे फिर से और फिर से और फिर से और फिर से जांच करनी चाहिए। हम उसके आगमन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम जागृत हो रहे हैं, हम उड़ने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इसे अच्छी तरीके से वचन के साथ जांचें, न कि किसी ने क्या कहा उसके साथ। सुनिश्चित करें कि आप खुद को जानते हैं मसीह के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव के रूप में। इसे फिर से और फिर से और फिर से जांचें। क्यों? उसके पास उसके हाथों पर मनुष्य का लहू है, उसे अच्छी तरह से जांचना है। एक ऑपरेशन से पहले एक डॉक्टर के बारे में क्या है? हमारे पास आज सुबह यहाँ पर कुछ डॉक्टर बैठे हुए हैं। ध्यान दें कि एक डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले वह क्या करता है। वो एक एक्सरे को चाहता है, वो लहू की जांच करना चाहता है, वह हृदय की जांच करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि क्या आपको कुछ सर्दी है इससे पहले कि वो आपको बेहोश करने वाली दवा को दे। वो हर एक औजार की जांच करता है, वो उन्हें अच्छी तरह से उबालता है यह देखने के लिए कि उस पर कोई कीटाणु तो नहीं है। वह सब कुछ करता है, वह बार 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 और फिर से जांच करता है। क्यों? उसके हाथों में एक मनुष्य का लहू होता है। वह विस्तार पूर्वक निश्चित होना चाहता है कि सब कुछ उतना ही सही है जितना सही हो सकता है। आपके बारे में क्या? आपके बारे में क्या जो पापी हैं? आपने इसके बारे में क्या महसूस किया? अपने हाथों पर एक मनुष्य के लहू का होना जिम्मेदारी, एक पायलट की तरह, और वह जांच करता है, डॉक्टर, और वह जांच करता है, और कई और भी हैं, बहुत से वैज्ञानिक। जब आपके अपने हाथों पर एक मनुष्य का लहू होता है तो आप क्या करेंगे? जब कोई न्यायाधीश सजा सुनाने जा रहा है तो देखें कि वह उन किताबों को कैसे पढ़ता है, बार बार और बार बार और बार बार और बार बार और बार बार। वो हर एक छोटी से छोटी चीज को जिसे वो देख सकता है इससे पहले कि वो सजा को सुनाए, क्योंकि उसके हाथों पर एक मनुष्य का लहू होता है। वहाँ पर इसका न्याय करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, समझे? हमारे बारे में क्या है? जब हम देखते हैं यह पूरी तरह से पहचाना गया है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो यहाँ पर है, वो हमारे हाथों में है, वो हमारे हाथों में है, वो आपके हाथों में है। आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? मैं इस यीशु के साथ क्या करूं जो अभिषिक्त मसीह है? ये क्या करता है? आप इसे कैसे जानते हैं कि ये वही है? इस दिन की प्रतिज्ञा जिस दिन में हम रह रहे हैं, वहाँ इसके लिए बहुत से वचन बताते हैं, इसलिए इसमें के बहुत से इन भागों को पूरा होना है, इस अंतिम दिन के अंतिम भाग को। यहाँ कुछ तो बातें निर्धारित की गई हैं और इसे होना चाहिए। ये यहाँ पर है, ये क्या है? वही अभिषिक्त मसीहा, अभिषिक्त वचन। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? क्या आप इसे संस्था को बेचने जा रहे हैं? अब पिलातुस ने क्या किया? पिलातुस ने अपने हाथों से उसे धोने की कोशिश की, यह कहते हुए। पहला काम जो पिलातुस ने किया था, उसने अपने हाथ साफ करने की कोशिश की, हाथों को धोकर, यह कहकर, ओह वो सही है, वो पूरी तरह से ठीक है। देखा, आप कहते हैं ओह बेचारा पिलातुस, पिलातुस क्या उसमें से बहुत उसे सही ठहराते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो उसके हाथों में था, उसने संदेश को सुना था, उसने वचन को देखा था, और वह उसके हाथों में था, और वैसे ही वो आपके हाथों में है, ये सही है। उसने क्या किया? उसने कहने की कोशिश की, ओह ठीक है, वो एक भला मनुष्य है, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूँ। यदि ऐसा है तो आज बहुतों के पास जवाब है, ओह वचन में कुछ भी गलत नहीं है, मुझे लगता है कि यह ठीक है, बाइबल बिल्कुल सही है, लेकिन हम कलीसिया पर विश्वास करते हैं, हमारा संप्रदाय इसके साथ सहमत नहीं है। समझे, देखा, कुछ वर्ग के लोग उससे अपने हाथ धोने की कोशिश करते हैं। मैं वचन में कोई दोष नहीं पाता हूँ, यह पीड़ितों के लिए उनके दिन के लिए ठीक था, लेकिन हम दूसरे दिन में रहते हैं, हम पीड़ितों के दिन में नहीं जीते हैं। सो इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना है जैसे पीड़ितों ने किया था, मुझे उस तरह से बपतिस्मा नहीं करना है जिस तरह से उन्होंने लिया था, मैं दूसरे दिन में रहता हूँ, मेरे पास वे चीजें नहीं है जो उनके पास थी, मैं दूसरे दिन में रहता हूँ। पवित्र आत्मा केवल उस झुंड के लिए ही दिया गया था। इब्रानियों 13:8 उसे फिर से आपके हाथों में वापस रख देता है, भागना नहीं है, वो पूरी तरह से प्रमाणित हुआ है, वह कल आज और युगानुयुग एक सा है, आपके पास कोई बचना नहीं है, आप उससे लांग कर किसी और युग में नहीं जा सकते। इब्रानियों 13:8 आपके विचारों को दोषी ठहराता है और ठीक आपके हाथों में उसे फिर से रख देता है। सो यीशु आपके हाथों में है जैसे कि पिलातुस के हाथों में था। देखो आप कहते हैं लेकिन मैं नहीं जानता, ठीक है तुम किसके लिए सुन रहे हो? पिलातुस एक पागान मूर्ति पूजक था, उसकी पत्नी एक पागान मूर्ति पूजक थी, लेकिन परमेश्वर इसे धर्मी ठहराने के लिए उस महिला को वहाँ भेजा और कहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम इस धर्मी व्यक्ति के साथ कुछ करो। उसने कहा मुझे इस दिन को सहन करना पड़ा, क्रम में सुबह थी, रात हो गई थी और एक 24 घंटे को दिन माना जाता है। मैं आज रात को कुछ स्वप्न से गुजरी हूँ, उस धर्मी मनुष्य के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जिससे कि तुम उस व्यक्ति के साथ कुछ करो। अब उसने कहा ठीक है तो फिर यदि ऐसा है तो मैं उसे अपने हाथों से धो दूंगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, न तो आप कर सकते हैं। एक बार सत्य को सुनने के बाद आपको इसे स्वीकार करना होगा या अस्वीकार करना होगा, कोई रास्ता नहीं। हाँ श्रीमान, आपको इसे करना होगा। प्रभु की चेतावनियाँ, यहूदियों ने चिल्लाकर कहा उसका लहू हम पर होने दो क्योंकि हम हमारे याजकों पर, हमारे संप्रदाय के सिद्धांत पर विश्वास करेंगे इससे पहले कि हम उस पर विश्वास करें। आप यहाँ पर हो, आज आप वर्गों को देखते हैं, लेकिन सभी को परमेश्वर के सवाल का सामना करना ही होगा, आपको ये सब करना ही है। किसी भी तरह पागान मूर्ति पूजक या आप जो भी हो सकते हैं, अविश्वासी, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, गुनगुने ठंडे गर्म और जो कुछ भी आप हो सकते हैं, आपको बिल्कुल उसी तरह से सवाल का सामना करना पड़ेगा, आप चाहें या न चाहें, यह आपके हाथों में है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर ऐसे लोग हैं जो इस सवाल से बचने के लिए पिलातुस की अन्य योजना को आजमाते हैं, उसे किसी अन्य केसर के पास भेजते हैं। देखा, पिलातुस ने कहा अब एक मिनट रुकना, मैं इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता, मैं वो एक धर्मी मनुष्य है, मैं इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता। ओह मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जो सुना है, मैंने कभी उसे चमत्कार करते हुए नहीं देखा है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे गवाह हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक धर्मी मनुष्य है, वह एक भला पुरुष है। देखो लेकिन मैं अपने लिए इसके साथ कुछ लेना देना नहीं रखना चाहता, मैं बस अपने हाथों को उससे धोता हूँ। मेरे लिए थोड़ा पानी लाओ, आप सब मेरे यहाँ गवाह हो। हाँ लेकिन परमेश्वर भी गवाही को दे रहा था, वह उसके हाथों में था और वैसे ही वो आपके हाथों में है। देखें, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, समझे, न केवल आप बल्कि यह टेप, वो आपके हाथों में है। आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? इस यीशु का जो मसीह कहलाता है, मसीह एक अभिषिक्त शब्द है। देखा, आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? ये इस घड़ी का संदेश है, वो दिन यहाँ पर है जो पूरी तरह से बाइबल और परमेश्वर के द्वारा साबित हुआ है। आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? अब आप इस सवाल से कैसे बचेंगे, आप इसके साथ कैसे बच निकलेंगे, वह आपके हाथों में है। और उस वाल का मामला आपके लिए एक मामूली सी बात होगी, भले ही सेवक या आप जो भी होने दो, वे यहूदी याजक थे और रब्बी, शिक्षक, पवित्र मनुष्य, लेकिन वो उसी तरह से उनके हाथों में था, वो वचन था, वो उस दिन के लिए परमेश्वर का सवाल था और वो इसे देखने में विफल रहे। केवल चुने हुए ने इसे देखा, वे जिन्होंने इसे विश्वास किया था। अब सभी को इस सवाल का सामना करना ही होगा, हर युग में हर बार ऐसा ही रहा है, हवा और आदम के युग में से होते हुए आगे नूह के युग में से होते हुए आगे दानियल और बेलशस्सर और नबुकदनेस्सर के समय में, आगे मसीह के समय में, आगे इस घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं यह उसी तरह से रहा है। वचन का सवाल सामने आया है, न ही उनकी संस्था या संप्रदाय नहीं, संस्थाएं नहीं, लेकिन वचन का सवाल उन बातों के विरोध रहा है। सो अब यह आपके हाथों में है।
फिर जो लोग पिलातुस की दूसरी योजना को आजमाते हैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे किसी और पर डालने के द्वारा,
पिलातुस ने कहा, अब आप जानते हो क्या, मैं बस उससे अपने हाथ को निकाल दूंगा, मैं बस उससे इस पानी से अपने हाथ को धो लूंगा, सो मैं बस, मुझे उसके साथ कुछ तो करना है, सो मैं क्या करूंगा, मैं उसे बिशप के पास उस मुख्यालय में भेज दूंगा।
जी हाँ, यही है जो आज वे करने की कोशिश करते हैं, समझे।
उन्होंने उसे एक केसर के पास भेजा, इससे वो पिलातुस के हाथ से नहीं छूट गया, वो किसी के हाथों से भी नहीं छूटा। इसने क्या किया, इसने उस पर पलटवार किया, यह व्यक्तिगत के लिए वापस आता है। आप कहते हैं ठीक है, मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं इसे स्वीकार करूंगा, यदि मेरी संप्रदाय इसे स्वीकार कर लेगी। आपकी संप्रदाय कलीसिया परिषद में है जो दोषी है, वे भला इसे कैसे ग्रहण करेंगे। यह ठीक वापस तुम पर पलटवार करता है, यह ऐसा नहीं है कि आपकी संप्रदाय क्या कहती है, यह ऐसा है कि तुम क्या कहते हो।
उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया है, अब आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, यही वो अगली बात है, समझे।
इससे वो आपके हाथ से छूट नहीं जाएगा, वह पूरी तरह से प्रमाणित हुआ है, वह पूरी तरह से पहचाना गया है जो इस समय का वचन है,
इस समय की प्रतिज्ञा है, लूथर के समय की प्रतिज्ञा नहीं, ये उस समय के लिए था, ये सुधारक के युग में का वो वचन था,
जैसा कि आप सभी ने सात मोहरों के बारे में सुना है।
जब सुधारकों के युग निकल गए, वो पशु के चेहरे जैसा मनुष्य संगठन जारी किया गया था,
लेकिन यह उकाब का चेहरा है जो पशु आज की चुनौती देने के लिए गया था।
और यह कहने की हिम्मत कौन करेगा कि वह परमेश्वर का प्रेरित वचन नहीं था,
जब उसने इसे यहाँ पहले ही बताया और उस ओर एरिजोना में भेजा और इसे ठीक यहाँ वापस लाया, यहाँ तक कि यह विज्ञान और बाकी सभी लोगों के भी साथ और उसी प्रकार साबित भी हुआ।
यह किताब पहले से ही खुली हुई है, यह सही बात है, बस सातवीं मोहर का इंतजार है, मसीह के आगमन की पहचान हो जाए।
तो ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में है, आपको उसके साथ कुछ तो करना है, उससे पीछे मत हटो।
जी हाँ श्रीमान, इस श्रेणी में मैं कहना चाहूँगा, उसे किसी और पर मत डालो।
यदि मेरा संप्रदाय इसे स्वीकार करता है भाई ब्रैनम, मैं इसे स्वीकार करूँगा,
लेकिन आप देखो, मेरी माँ इस कलीसिया से संबंधित थी,
वो अपने युग में रही थी, वह तुम नहीं थे, ये अब तुम हो।
देखो उससे क्या बाहर आना था, उसे क्या होना था, तुम्हारे बारे में क्या है।
तो ठीक है, देखो आप कहते हैं मेरी माँ एक पेंटिकॉस्टल थी, उसने ऐसा वैसा किया था, वह संगठन से बाहर आई, लेकिन मैं अब आपसे बात करना चाह रहा हूँ, तुम्हारे बारे में क्या है, समझे।
इस श्रेणी में हम कई शिक्षित लोगों को देखते हैं।
अब मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ भावनाओं को ठेस पहुँचाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं करता हूँ तो मुझे वेदी पर होना चाहिए। पश्चाताप करते हुए मैं इसे ईश्वरीय प्रेम में कह रहा हूँ।
यीशु जब वो वहाँ पर खड़ा था और वो फरीसी कहता, तुम्हारे पिता शैतान से हो, तुम उसके कामों को करते हो,
फिर भी उसने क्रूस पर शांति और उनके लिए दया के लिए कहा जिसने उसे क्रूस पर चढ़ाया।
देखो वो उनके ऊपर क्रोधित नहीं था, उसने कहा तुम सर्प के वंश हो, देखा, समझे।
हर एक चीज उसने उन्हें हर एक चीज से बहिष्कृत किया जो वो कर सकता था,
देखो, और फिर उनके लिए क्रूस पर प्रार्थना की, देखा।
ये ऐसा नहीं था जिसे वो करना चाहता था, ये ऐसा नहीं था, लेकिन उन्हें गलती को दिखाना था जिसे वे कर रहे थे।
और मैं आज यही बात को कह रहा हूँ, इस श्रेणी के लोग किसी और के गले पर थमाते हुए, या ऐसा ही कुछ सेना में हम ऐसा कहते हैं, किसी और के गले पर थमाते हुए हम इसे किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आदम और हवा ने किया।
हवा ने कोशिश की, आदम ने कहा वो स्त्री जिसे आपने मुझे दिया, और उसके लिए यह कोई बहाना नहीं था, देखा।
स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे गुमराह किया, वो वही वो एक था जो मेरे साथ यौन संबंध रखता था, उसने मुझे बहकाया, उसी ने ऐसा किया।
इस बात ने इसे बिल्कुल भी दूर नहीं रखा, उन्हें ठीक न्याय के लिए जाना पड़ा,
वैसे ही। जी हाँ श्रीमान,
तो ठीक है, वे इसे दूसरे पर नहीं छोड़ सकते, एक यह नहीं कह सकते यदि मेरा संप्रदाय इसे विश्वास करेगा, मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं इस संप्रदाय में रहा हूँ, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है।
यहूदियों के पास भी यही बात थी, वैसे ही तुम करते हो।
और ध्यान दें, इसमें कई हम इस श्रेणी में भले संस्कृति पाए मनुष्य को पाते हैं।
अब जरा ध्यान से सुनना, देखो संस्कृति जिसे हम आज संस्कृति कहते हैं, यह वही है जो शैतान ने हवा के लिए उत्पन्न किया, उस थोड़े से ज्ञान को, कहा तुम्हारी आंखें खुली नहीं है जिससे तुम इसको नहीं समझती हो। वो वचन को जानती थी और ऐसा ही सब था। उसने परमेश्वर के उस वचन को प्रमाणित होते हुए देखा और इससे सही होना चाहिए था। उसने उसे अनंत जीवन में बनाए रखा जब तक वह उस वचन के साथ बनी रही थी। जब उसने उस वचन को तोड़ा, उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, वह उसी दिन मर जाएगी जिस वचन को उसने तोड़ा था, और जब उसने उसे तोड़ दिया वह मर गई। यह सही बात है। हमारे पास यहाँ परमेश्वर का प्रमाणित वचन है, आत्मा के द्वारा प्रमाणित होता हुआ, सिद्ध होता हुआ, जिसे हमने प्राप्त किया है और हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता है। हमने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, वही सुसमाचार, वही चिन्ह, वही अद्भुत कार्य, वही सेवकाई, यहाँ तक कि वही अग्नि का स्तंभ जो हमारे सामने दिखाई देता है। चिन्ह और अद्भुत कार्यों को दिखाते हुए वहाँ कोई बहाना नहीं है, कहीं भी नहीं। और यह ठीक उसी तरह जैसा कि बाइबल ने कहा था कि अंतिम दिनों में यह बात जगह लेगी और मलाकी 4 से एक पुकार करेगा, बच्चों के विश्वास को फिर से अपने पिता की ओर वापस फेरेगा। और ठीक इसके बाद दुष्ट चलेगा या धर्मी दुष्टों की राख पर चलेगा, सारे संसार को जला दिया जाएगा। और उस ओर परमाणु ऊपर लटक रहे हैं और बम अपने स्थानों पर रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि जर्मनी ने क्या किया था। जैसे ही उन्होंने देखा कि राष्ट्रपति की हत्या हो गई थी, उन्होंने अपनी सेना को बहुत ही जल्दी तैयार कर दिया, क्योंकि यही एकमात्र चीज थी जो रूस को बमबारी से रोक रही थी। और उन्होंने प्रहार, कैनेडी ने उनके लिए तभी संदेश को भेजा कि जिस घड़ी वे ऐसा करते हैं तो वो उन्हें जर्मनी से बाहर धरती पर से साफ कर देगा, समझे। और उन्होंने सोचा कि वे इसे कब्जा कर सकते हैं, लेकिन देखो अब तक ये घड़ी नहीं आई है, समझे। हम देखते हैं चतुर शिक्षित प्रचारक, सुसमाचारक इसे किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखा, क्यों क्यों पिलातुस ने ऐसा नहीं कहा, ठीक है एक मिनट रुकना, ये व्यक्ति मेरी पत्नी ने मुझे बताया है और मैंने इसकी बहुत सी गवाहियों को सुना है। तुम जानते हो मैं इस बात पर रुचि रखता हूँ, मैं इसे जानना चाहता हूँ, मैं अनंत जीवन के होने के लिए क्या कर सकता हूँ, तुम मेरे हाथों में हो, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। वो कहता, उसने कहा क्या तुम मसीहा हो, क्या तुम वो यहूदियों के राजा हो, उसने कहा यही है जो तुमने कहा है, तुमने कह दिया। या हमें बताओ वास्तव में क्या तुम यहूदियों के राजा हो, उसने कहा उस अंत में मैंने जन्म लिया था, उसने कहा मैं इसमें कोई दोष नहीं पा सकता हूँ, ठीक है मैं उससे अपने हाथों को धो दूंगा। उसने उसे उत्तर दिया लेकिन वह उससे ग्रहण नहीं कर सका, क्यों, इससे उसकी प्रतिष्ठा कम होगी, इसलिए उसने सोचा कि वो राज्य के पुरोहित के पास भेज देगा और देखेंगे कि वो इसके बारे में क्या करता है। देखा, अब भी वही बात है, सवाल फिर से सामने आता है, आप इसके साथ क्या करेंगे जो वचन है, आपको क्या करना है, पुरोहित से पूछे या बिशप से या किसी और से, यदि आप अपने बपतिस्मा के उद्देश्य को बदल सकते हैं, यदि आप ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं, आप ऐसा देखते हैं और निश्चित रूप से आप नहीं करते हैं, आप ठीक वापस अपनी ओर डाल देते हैं, यदि आप करते हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, समझे। इससे लोगों की प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, हाँ वे सोचते हैं, और संप्रदायीय परिषद नहीं खड़े होंगे, जैसे पिलातुस ने इसे केसर के ऊपर डाल दिया, वे इसके लिए खड़े नहीं होंगे। केसर ने इसे वापस पिलातुस के हाथों में रख दिया, इसलिए वे अपने संप्रदाय के प्रमुखों के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं और यह काम नहीं करता है। इस चालाकी ने कभी काम नहीं किया और ये काम नहीं करेगा। इसने पिलातुस के लिए काम नहीं किया, यह आपके लिए काम नहीं करेगा, यह किसी और के लिए काम नहीं करेगा। अब दूसरी बात, आप जो बात कर सकते हैं वो यह है, तीसरी बात मेरा मतलब उसे स्वीकार करना या उसे अस्वीकार करना है। आप उससे अपने हाथ को नहीं धो सकते, आप उसे किसी अन्य सिद्धांत या किसी अन्य चीज पर नहीं डाल सकते, आपको सवाल का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पिलातुस की तरह वो उसी बात के साथ खड़ा था, उसने कहा मुझे कुछ पानी लाकर दो, मैं उससे अपने हाथों को धोता हूँ, साबित करने के लिए। जब वो वापस लौटा तो उसने अभी भी न्याय को किसी पर डालना था, उसे क्षमा नहीं किया। उसने यह कहने की कोशिश की, ठीक है यदि मैं उसे अपने हाथों से नहीं निकाल सकता तो मैं उसे केसर के हाथों में रख दूंगा। यह आपको एक व्यक्तिगत रूप में भी दिखाई देता है। आप क्या करने जा रहे हो, ना ही माँ ने क्या किया, पापा ने क्या किया, पास्टर क्या करता है, भाई ब्रैनम क्या करते हैं, किसी ने क्या किया, यह आपके हाथों में है। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं इस इशू के साथ जो मसीह कहलाता है, क्योंकि आपके अपने हाथों में लहू है और ये परमेश्वर का लहू है। अब आप क्या करने जा रहे हो, क्रूस पर चढ़ाने का दोषी होना, समझे। आप उसे क्रूस पर चढ़ा सकते हैं, अपने संप्रदाय को स्वीकार कर सकते हैं, या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, यह आप कह सकते हैं, ठीक है मैं बस इसे आगे पर डाल देता हूँ, मुझे इस कलीसिया के किसी भी बातों से कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, वह आपके हाथों में है, ये सही बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं अब पूरी तरह से भूल जाऊंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, यह अब भी आपके हाथों में है। ठीक है, मैं बस कहूंगा, मेरे पास्टर ने मुझे ऐसा सिखाया है, यह ठीक आप पर पलटवार होगा, यह आपके लिए है, आप जानते हैं। अब आप या तो उसे ग्रहण कर सकते हैं या तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हैं, आप बस जिस तरह से इसे करना चाहते हैं। क्या यह उनमें से एक को आना है? अब क्या जैसा यीशु ने इन फरीसियों से कहा, उसने कहा जैसा कि तुम अंधे फरीसी हो, देखिए आज इसी बात को कौन कहेगा, तुम अंधे धार्मिक शिक्षकों, तुम साम्यवाद के समय को समझ सकते हो, तुम इससे इतना लड़ते हो और ये जानते हो कि परमेश्वर ने उसी चीज को ऊपर उठाया है ताकि तुम्हें नष्ट करे। देखें, वचनों को नहीं जानते हुए, देखा तुम समझ सकते हो कि साम्यवाद संसार को लेने जा रहा है, तुम ये देख सकते हो, तुम इसे समझ सकते हो। हमारा सारा विषय साम्यवाद पर है, साम्यवाद को मार भगाओ, मैं इसे तब तक सुनता हूँ जब तक मैं इसे सुनकर तंग नहीं हो जाता। मैं भी इसके विरोध में हूँ, निश्चित रूप से मैं इसके विरोध में हूँ, लेकिन मैं उन पुरुष या महिला के अधिक विरोध में हूँ जो यीशु मसीह वचन को अस्वीकार करते हैं। या चाहे आप एक प्रचारक हों या आप जो भी हों, आप उस साम्यवाद की तुलना में मसीह के लिए अधिक दोषी हैं। वो अनजान है और इसके बारे में कुछ नहीं जानता है, आपको जानना चाहिए, समझे। आप साम्यवाद के समय को समझ सकते हैं, लेकिन आप उस दिन के चिन्ह को नहीं समझ सकते हैं जिस दिन में आप रह रहे हैं। यीशु ने उन फरीसियों से कहा तुम ढोंगी हो, कहा तुम बाहर जाकर और आकाश की ओर देखते हो और कहते हो कि सूरज लाल है और धुमला हो रहा है तो कल गलत होगा, यदि आकाश खुला रहता है तो कहा तुम कहते हो कि कल एक खुला दिन होगा। कहा तुम समय के चिन्हों को समझ सकते हो या आकाश के चिन्हों और मौसम को, लेकिन उस समय के चिन्ह को तुम नहीं जानते। वहाँ वो मसीहा था और इसे अस्वीकार कर रहे थे, और हम हमेशा ही साम्यवाद और इनमें से कुछ अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो समय का चिन्ह है हम इसे नहीं पकड़ते हैं। देखा, हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, अनदेखा करते हैं। ठीक अभी अविश्वास में एक साथ एकजुट हो रहे हैं और वे इसे ग्रहण करते हैं, लेकिन उस समय के चिन्ह को समझने और देखने में विफल होते हैं जो बाइबल ने कहा कि ऐसा होगा। क्या आपने इसे समझा? अब बहुत ही जल्द बंद करना होगा, देर हो रही है। देखें, जैसा उनके पिताओं ने किया था वे वैसा ही आज भी करते हैं। अब निर्णय के लिए पहुंच गया, इसे पहुंचना होगा, आपको किसी तरह से इस तक पहुंचना होगा, समझे। फिर से वचन का क्रूस पर चढ़ाया जाना या आप क्या करने जा रहे हैं? वचन का क्रूस पर चढ़ाया जाना नजदीक है। वचन का क्रूस पर चढ़ाना और प्रमाणित वचन को रोकना संप्रदाय के लिए, जैसे कि पिलातुस ने किया जो किसी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहा था। अब आप एक व्यक्तिगत रूप में क्या करेंगे उस अभिषिक्त वचन के साथ जो मसीह कहलाता है? वही जो कल था, वही मसीह जिसने नूह के दिनों में वचन को अभिषिक्त किया, वही मसीह वो वृक्ष जो अदन के बगीचे में था, जिसे हवा ने छोड़ दिया, उस जीवन के वृक्ष को खाना छोड़ दिया ताकि ज्ञान के वृक्ष को ले ले। हवा और आदम ने जीवन वृक्ष को छोड़ दिया ताकि मृत्यु के वृक्ष को ले ले। नूह के समय ने भी यही काम किया, नबियों के दिनों में भी उन्होंने यही काम किया, मसीह के दिनों में उन्होंने वही काम किया, और आज वे यहाँ पर हैं, क्योंकि हर एक जन अपने समय के बारे में बोलता है, और जब वह बात पूरी हुई थी तो हर बार उन्होंने अपना कारण संस्था को लिया और इत्यादि, और मसीह के अभिषिक्त वचन के बजाय संसार के ज्ञान को लिया। एक व्यक्तिगत के रूप में आप क्या करेंगे? पिलातुस के अपने हाथों से वो कभी नहीं छूटा। मैं बंद कर रहा हूँ, सो मैं बस कुछ क्षण के लिए। अब भी पिलातुस के अपने हाथों से वो कभी नहीं छूटा, न ही आप उस तरह से करेंगे जैसा उसने किया, न ही उन योजनाओं में से कोशिश करेंगे, उसने कभी भी नहीं किया। आप जानते हैं कि पिलातुस का क्या हुआ था? उसने अपने दिमाग को खो दिया। यह पूरी तरह से इतना अधिक हो गया था कि वह सूली पर चढ़ाए जाने को सुन सकता था, वह पूरी तरह से एक रोष को सुन सकता था कि आखिरकार वह पागल हो गया। और उन्हें नॉर्वे में एक पौराणिक तरीके से मिला, या नहीं मुझे क्षमा करना, वहाँ स्विट्जरलैंड में जहाँ मैं गया था, वो एक मिशनरी है, उनका दावा है कि गुड फ्राइडे के दिन संसार भर से हजारों लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। एक पानी का एक खड्डा है जहाँ पिलातुस ने आत्महत्या की थी, उसने अतः पानी के इस खड्डे में खुद को मौत के घाट उतार दिया। और वे दावा करते हैं कि प्रत्येक गुड फ्राइडे दोपहर 3 बजे पानी नीले रंग में बदल जाता है, यह उबलने लगता है जहाँ पर पिलातुस का शरीर पड़ा हुआ है। उसने इसे अस्वीकार किया, उसके हाथों में अभी भी लहू है, और उसने अस्वीकार किया, उसने इनकार किया, पानी को, आप उससे अपने हाथों को नहीं धो सकते। वहाँ कोई पानी नहीं है, कोई साफ करने वाला साबुन नहीं है जो इसे साफ कर सकता है। वो आपके हाथ में है, आप उसके साथ क्या करेंगे? यहाँ केवल एक चीज है जो आप कर सकते हैं। यदि आप उससे आपके हाथ धो नहीं सकते हैं तो आप उसे किसी और पर डाल नहीं सकते हैं। आप बस काल्पनिक रूप से इससे छोड़कर नहीं निकल सकते हैं। संसार में इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। केवल एक ही चीज आप कर सकते हैं, इसे अपने हृदय में स्वीकार करना है। यही उससे छुटकारा पाने का तरीका है। उसे अपने हाथों से निकालकर और उसे अपने हृदय में रखो, या उसे अपने हाथों पर ही रहने दे और न्याय के लिए खड़े रहें। यही केवल एक चीज है जो आप कर सकते हैं। पिलातुस का अंत भयानक था। वचन कहता है कि ये जो उसे अपने हाथों पर रखते हैं, मैं इसे पढ़ने वाला था, लेकिन यह कहा उन्होंने चट्टानों और पहाड़ों के निमित्त पुकारा, उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन उनकी प्रार्थना में बहुत देर हो चुकी थी। समझे? वे चिल्ला उठे, हमें उसके मुख से छिपा ले जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने के प्रकोप से छिपा ले, वह मेंढों के लिए है, वो मेमने का जीवन जो आया है, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आप क्या सोचते हैं कि ओसवाल्ड का अब क्या होने जा रहा है जब वो सर्वोच्च न्यायालय के सामने चलकर जाएगा और उन गुस्से वाली न्यायपीठ की आंखों को देखता है और वे सभी जो वहाँ बैठे होंगे? वह जानता है कि क्या होने जा रहा है। ये या तो गैस चैम्बर होगा, या वहाँ एक रस्सी लटक रही होगी, या कुछ और ही, उसे इसका सामना करना होगा। लेकिन क्या होगा यदि आप अपने हाथों पर लहू के साथ वहाँ से निकल जाएं, अस्वीकार करने का, और जानते हो कि नरक आपके सामने है, अनंत विनाश? चट्टानों और पहाड़ों के लिए पुकारना, लेकिन प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इब्रानियों 10 में यदि हम इच्छा से पाप करते हैं, पाप अविश्वास है। यदि हम अविश्वास करते हैं, हमारे सत्य के ज्ञान को जानने के बाद, आपको इसे ग्रहण नहीं करना है, इसके बारे में बस जानना है। आपके पास ये होने के लिए नहीं होना है, आप बस ओह नहीं नहीं देखा। हमारे सत्य को ग्रहण करने के बाद, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है, यहोवा यो कहता है। यदि हम इच्छा से अविश्वास करते हैं, सत्य को हमारे सामने रखे जाने के बाद, और फिर कोई दया नहीं होगी, अब और दया नहीं की जाएगी। पास्टर इस टेप को सुन रहे हैं, इसके बारे में क्या है? कलीसिया के सदस्य इस टेप को सुन रहे हैं, इसके बारे में क्या है? आप क्या करने जा रहे हैं यदि हम इसे इच्छा से अविश्वास करते हैं? आप इससे अपने हाथों को नहीं धो सकते, आप इसे मुख्यालय पर नहीं डाल सकते, ये आपके ऊपर वापस आ जाएगा, ठीक आपके पास वापस आ जाएगा। आपने इसे सुना है, आपके बारे में क्या है? उस दिन पर आप कैसे खड़े होंगे? वो या तो आपके हाथों में है या आपके हृदय में, दोनों में से एक। परमेश्वर हमारी सहायता करे। यदि आप सिर्फ एक हत्या की कल्पना कर सकते हैं, और जो उस मनुष्य के हृदय में क्या चल रहा होगा, उसने क्या किया है? वह बहुत देर से जागा जब वो इसे कर चुका था। देखो, उसके पास मौका था। वह एक स्वतंत्र अमेरिकी जन्मा था, वो एक अमेरिकी था, लेकिन वो अपने जन्म अधिकार को बेचना चाहता था ताकि एक रूसी बने, और इसकी उल्टी प्रतिक्रिया हुई। उसने एक रूसी लड़की से विवाह किया। अब वो क्यूबा के साम्यवाद पार्टी का एक स्वतंत्र विचारक है, स्वतंत्र विचार करने वाला। मैं अपनी सोच को खुद करता हूँ। आपके पास कोई विचार नहीं आते हैं। आप यीशु के साथ क्या करेंगे जो मसीह कहलाता है? आप कोई स्वतंत्र विचार करने वाले नहीं है, कोई स्वतंत्र विचार नहीं है। वो मन जो मसीह में था, वो आप में होने दो। आइए प्रार्थना करें। इन विचारों को सोचें। यदि कोई स्तुति होनी है, यदि कोई सद्गुण होना है, तो इस पर सोचें। आज सुबह हमारे बीच में और इस टेप में मैं भी बोल रहा हूँ। यदि आप आज सुबह यहाँ उपस्थित हैं और आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के साथ सही नहीं हैं और आप उसकी आत्मा से नहीं जन्मे हैं, और परमेश्वर ने, आप कहते हैं ठीक है, मैंने एक अंगीकार को किया है, ये वो नहीं है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, क्या परमेश्वर ने इसे स्वीकार किया है? आप कह सकते हैं हाँ, मैंने एक अंगीकार किया है, और इत्यादि। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ, वही पिलातुस ने किया। निश्चित रूप से मैंने अंगीकार किया, मैं इस धर्मी मनुष्य के साथ क्या करूं? आप इस तरह से उससे अपने हाथों को नहीं धो सकते हैं। नहीं नहीं, आप उसके साथ क्या करेंगे?
यदि आप एक फिर से जन्म पाए मसीह नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ जो आप में रहता है अपना जीवन संपन्न कर रहे हैं, तो आप इसे अभी क्यों नहीं लेते हैं?
आप इससे कभी भी हाथ नहीं धोएंगे, आप इस संदेश के अंत को कभी नहीं सुनेंगे। ये इसके जरिए बजेगा जब तक आप संदेश को अपने हृदय में नहीं लाएंगे कि यीशु मसीह कल, आज और हमेशा के लिए एक ही है। आज सुबह के उपस्थित श्रोतागण में यहाँ वे लोग होंगे जो समझते हैं कि वे गलत हैं और अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। हमारे पास एक वेदी की पुकार के लिए इतनी जगह नहीं है, जगह पूरी तरह से भरी हुई है, लेकिन सिर्फ इतना कहें, मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम, परमेश्वर मेरी सहायता करे, परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं आपके हाथों को देख रहा हूँ। अब यही है जो मैं चाहता हूँ, ठीक यही मैं चाहता हूँ परमेश्वर के सामने। वो जानता है कि मैं दोषी हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं दोषी हूँ। मैं उसे अपने हाथों पर नहीं चाहता हूँ, मैं उसे अपने हृदय में चाहता हूँ। अपने हाथ को ऊपर उठाएं, कहें मेरे लिए प्रार्थना करें भाई ब्रैनम, प्रभु आपको आशीष दे। मैं यहाँ लोगों की संख्या को देख रहा हूँ, हो सकता है 40-50 हाथ ऊपर उठे हुए हों। आज बुला रहा है, आज बुला रहा है। अब इस पर सोचें, ये वो बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, यह वही है जो आपसे बात कर रहा है। क्या आपने अब तक पाप किया है, इतना तक आपका हृदय इतना कठोर हो जाता है, इतना तक आप यहाँ तक इसे अब और सुन भी नहीं सकते हैं? एक समय एक छोटे से लड़के या छोटी लड़की की नाई, आपने इसे सुना है, आपके पास इसे करने की इच्छा थी, लेकिन आपने इसे टाल दिया और आप बस उन चीरने और फाड़ने से कठोर होते गए, कठोर होते गए। क्या ये इतनी दूर चले गए हैं कि आप इसे और नहीं सुन सकते? क्या आप वहाँ पर खड़े हैं जहाँ आपके पास उस स्थान पर जैसे आज सुबह ओसवाल्ड खड़ा है, जिसे आप जानते हैं, आप किस तरह से इसे कर सकते हैं? क्या कोई एक और होगा इससे पहले हम बंद करें और मैं प्रार्थना को करूं? इस इमारत में कहीं भी हो जिसने कभी अपने हाथ को नहीं उठाया हो, कहें भाई ब्रैनम, बस जब से आपने आखिरी शब्दों को कहा है मैं ऐसा महसूस करता हूं। कोई भी जो बाहर है, गलियारों में, खिड़कियों के आसपास, कहीं भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल परमेश्वर आपको आशीष दे। नौजवान महिला, श्रीमान, परमेश्वर आपको आशीष दे। आपने पकड़ा, ओ परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला, कोई और है? परमेश्वर आपको आशीष दे। महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहाँ पर और परमेश्वर आपको आशीष दे। वहाँ पर छोटा लड़का, छोटी लड़की, हाँ प्रभु आपको आशीष दे। वहाँ पीछे श्रीमान, जी हाँ। अब जरा अभी इसके बारे में सोचें। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करें, जब हम धीरे धीरे इसे गाते हैं, यीशु बुला रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि आप केवल यह कहें, हे प्रभु मुझ पर दया करें, एक पापी या दिखावा करने वाला। मैं एक कलीसिया का सदस्य हूँ प्रभु, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, मेरी सहायता करें, मैं आपकी सेवा करूँगा। मैं ठीक अभी इसकी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैंने अपना हाथ उठाया है कि मैं आपको चाहता हूँ। अब आप मेरे हृदय को उठाएं कि मैं आपको ग्रहण करूँ और मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करूँ। जब हम इस पद को फिर से गाते हैं, तो क्या आप इसे करेंगे? आज बुला रहा है, आज बुला रहा है। अब आप अपने तरीके से प्रार्थना करें, अब प्रार्थना करें। यीशु पुकार, ये वो बोल रहा है, यही वो कारण है कि आपने अपने हाथ को उठाया है। आज बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। उसकी आवाज को ध्यान दें, उसकी सुनो, ठीक अभी उसे सुनो। कहें प्रभु मैं दोषी हूँ, आपका लहू मेरे हाथों पर है, मैं एक पापी हूँ, मैं इसे अब वहाँ पर और नहीं चाहता, मैं इसे नहीं धो सकता, मैंने इसे वर्षों तक आजमाया है। मैं आपसे मुड़कर नहीं जाऊँगा जैसे पिलातुस ने किया और आपको किसी और के पास भेजने की कोशिश की। मैं आपको चाहता हूँ, मेरे हृदय में अभी आए प्रभु, मैं आपको ग्रहण करता हूँ। मैं आपको ठीक मेरे सामने खड़ा देख रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पर एक छवि खड़ी है। विश्वास के द्वारा मैं ठीक आपके पास चलकर आ रहा हूँ, यह जानते हुए कि आप मुझे क्षमा करेंगे। और मैं आज के बाद से आप मेरे हृदय में होने जा रहे हैं। आज हर एक जन प्रार्थना करे, यीशु बुला रहा है, वो नम्रता से आज बुला रहा है। स्वर्गीय पिता, छोटा सा संदेश समाप्त हुआ है और अब फैसला आज सुबह अदालत निर्धारित की जाती है। दूत यहाँ कमरे में इकट्ठा हुए हैं, यहाँ वो महान पवित्र आत्मा प्रमाणों को दे रहा है कि यीशु अभी भी जीवित है। वह अनंत जीवन का झरना था, कब्र उसे रोक नहीं सकती थी, ना ही अधोलोक उसे रोक कर रख सकता था। वो ऊपर चढ़ गया, अधोलोक से निकल गया, कब्र से निकल गया और वो आज हमारे बीच में खड़ा है। और हमारी संस्था और संप्रदायों ने हमारे कई लोगों को बांध के रखा है प्रभु, पाप ने उन्हें बांध के रखा है, लेकिन आज वे आजाद होना चाहते हैं। वे पिलातुस की तरह खड़े हैं और किसी और पर उसे डालने की कोशिश करने की बजाय उन्होंने अपने हाथ को उठाया है। मेरे हृदय में आए प्रभु यीशु, मैं आपको अब और मुझसे दूर नहीं करूंगा, मैं इसे नहीं कर सकता, आप अभी भी मेरे हाथों में हैं। मैं बस धोता रहा और आप नहीं आए, लेकिन अब मैं आपको ग्रहण करता हूं, मैं आपको अपने जीवन में चाहता हूं और मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। प्रभु मुझे मेरे पापों की क्षमा करके अपने राज्य में ग्रहण करें और मुझे विश्वास दें, ये भरोसा दिलाने के लिए कि आपने पिता मुझे स्वीकार किया है, इसे प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम के जरिए से हम प्रार्थना करते हैं। और अब जब अभी हमारे सिर झुके हुए हैं, विश्वास के द्वारा, और परमेश्वर आप मुझे ईमानदार बनने में सहायता करें, लेकिन ये जानते हुए कि आपने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा और मैं उसे अनंत जीवन दूंगा और मैं उसे अंतिम दिनों में खड़ा करूंगा। वो जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं अपने पिता और पवित्र दूतों के सामने स्वीकार करूंगा। वो जो सुनता है, संत यूहन्ना 5:24 का वास्तविक सच्चा अनुवाद, वहाँ वो जो समझता है, जो मेरा वचन ग्रहण करता है, वो जो मेरा वचन ग्रहण करता है और उस पर विश्वास करता है, उस पर जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और उसे न्याय के लिए नहीं बुलाया जाएगा। आप ओसवाल्ड की तरह न्याय के कटघरे में नहीं आएंगे, लेकिन आप निकल चुके हैं एक मुफ्त क्षमा के साथ, मृत्यु से जीवन की ओर। प्रभु, मैं नहीं जानता कि कैसे, मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा हुआ है। मैं यह अपने हृदय में विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास चला गया है। मैं स्वतंत्र रूप से आमीन कह सकता हूँ प्रत्येक वचन के लिए जो आप कहते हैं, और मैं इसे ठीक अभी स्वीकार करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। अब अपने सिर को झुकाकर, आप जो ये विश्वास करते हैं, जिन्होंने कुछ ही समय पहले अपने हाथों को उठाया था और विश्वास के द्वारा आप वहाँ खड़े हुए मसीह की छवि को देखते हैं, जिसे आप में होना चाहिए। अब आप विश्वास के द्वारा चलते हैं, विश्वास करते हैं कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं और आज के दिन के बाद से आप मसीह बपतिस्मा के लिए तैयार हैं और आप अब मसीह में चलने के लिए तैयार हैं। क्या आप उसकी गवाही के रूप में करेंगे? अपने हाथों को वापस उठाएं, कहें, विश्वास के द्वारा मैं इसे अपने पूरे हृदय से भरोसा करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे, ये अच्छा है। मैं अब इसे स्वीकार करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐसा दिखाई देता है जैसे हर एक जन को मैं देख रहा हूँ। अब मैं स्वीकार करता हूँ, देखो आप अच्छे नहीं हो, आप कभी भी अच्छे नहीं थे, आप अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन यीशु अच्छे लोग नहीं है उनके लिए मरा। मेरे पास होने के लिए क्या करना है भाई ब्रैनम? बस उसने जो किया उसे स्वीकार करें, बस जो उसने आपके लिए किया उसे स्वीकार करें। और अब इस पर विश्वास करने और इसे स्वीकार करने के द्वारा, अब मैं विश्वास करता हूँ पास्टर, तालाब खुला रहेगा, बपतिस्मा क्रम में होगा। यदि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, यदि आपने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के शीर्षक को लिया है, तो आप वास्तव में, मैं इसे आदर और सम्मान के साथ कहता हूँ, लेकिन इसे मेरे तरीके से देखना, आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, आपने नहीं लिया है क्योंकि आपने उसका पालन नहीं किया जो उसने कहा है। उसने कहा उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दें। यदि आपके पास केवल वे शीर्षक थे जो आपको बताए गए, उसने कभी नहीं कहा जाओ इन शीर्षकों को कहो, इन नामों को लो। ऐसा बाइबल में कभी नहीं किया गया, इस तरह से कभी नहीं किया गया था। ऐसा था बपतिस्मा दो, जिस तरह से यीशु ने कहा था पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, जो कि यीशु मसीह है। पतरस चाबियों के साथ था, उसने उसी बात को कहा। हर दूसरे प्रेरित ने, पूरी कलीसिया ने, जब तक पूर्व निसिया काउंसिल नहीं आ गया, जब तक रोमन कैथोलिक कलीसिया संगठित नहीं हो गई, तब उन्होंने नाम की बजाय शीर्षकों को स्वीकार कर लिया। आप या तो संप्रदाय के रोमन रीति रिवाजों के अंदर बपतिस्मा लेते हैं या यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, दोनों में से एक। ये आपके हाथों में है, आप इससे हाथ नहीं धो सकते, ये वहाँ पर है, आपने अब इसे स्वीकार कर लिया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब ऑर्गन वादक और पियानो वादक प्रसिद्ध पुराने स्तुति के गीत को बजाते हैं, मेरा विश्वास तेरी ओर देखता है, तुझ कलवरी के मेमने की ओर, दिव्य उद्धार करता, आप मेरी सुने जब मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे सारे अपराध को दूर करें, और मैं आज के दिन से पूरी तरह से तेरा बनूं, कोई एक भी इमारत को छोड़कर नहीं जाए, केवल आदर के साथ खड़े रहें और उसकी ओर अब हमारे हाथ को ऊपर उठाएं। मेरा विश्वास तेरी ओर देखता है, और वो वचन है, तुझ कलवरी के मेमने की ओर, दिव्य उद्धार करता, अब मेरी सुने जब मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे सारे अपराध को दूर करें, और मैं आज के दिन से पूरी तरह से, पूरी रीति से और संपूर्ण रीति से तेरा, मैं अब मेरे जीवन को समर्पित करता हूँ। पानी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाएगा, यदि आप अभी बपतिस्मा नहीं ले सकते तो हम आज रात फिर से बपतिस्मा देंगे। सारी दोपहर को इसके बारे में सोचें, आपके हाथों में है, इससे छूटें, केवल एक ही जरिए से आप कर सकते हैं, यीशु मसीह के लहू में धोया गया हो। कौन है देखा? जी हाँ श्रीमान, अब इसे याद रखें, जैसे हम अपने सिर को झुकाते हैं, अब उसकी ओर देखें। जब जीवन का काला चक्रव्यूह, फैसला अब आपके हृदय में है, वह मुकदमे पर है, वचन क्रूस पर चढ़ने के लिए तैयार है, मसीह मुकदमे पर है, आप यीशु के साथ क्या करेंगे जो मसीह कहलाता है? तू मेरा मार्गदर्शक बन, अंधेरे को दिन में बदलने के लिए आज्ञा दे, दुख को मिटाएं, आंसू को पोछें, न ही मुझे कभी भटकने दें आपको छोड़कर। अब इसके लिए हमारे हृदय को झुकाएं। गहराई से सोचे मित्रों, हो सकता है कि आपका नाम आखिरी हो जो किताब में चला जाए, हम अंत समय पर हैं। अब वास्तविक गहराई से सोचें, क्या आप यहाँ कोई है जो उससे दूर जा चुका है? याद रखें, यह फिर कभी नहीं आ सकता है। पिलातुस को कोई और मौका नहीं मिला, उसने अपनी बचने की पूरी तरह से कोशिश की और वो ऐसा नहीं कर सका, वो उसके हाथों में था। और आप क्या करेंगे इस दिन के अभिषिक्त वचन के साथ जो मसीह कहलाता है?